السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد
السلام
لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو عافیت کے ساتھ آج کے دن تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. بہت ہی روحانیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں خود کو پیش کرتے ہوئے دل سے دعا کیجئے کہ اللہ آج کے ایک ایک سیکنڈ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اس کا حق ادا کروں. آج سے دو چار دن پہلے بھی کچھ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہوگی، لیکن اس نے آپ کو مجھے زندہ رکھا اور ہم موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جائے گی کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی نظروں سے دیکھیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں استقبال رمضان پروگرام 2020. 2020 سن بدلتے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے آگے سے آگے اس سفر میں شامل ہوتے رہیں گے، لیکن ہم ہوں گے کہ نہیں یہ سوچ کر اس سال کے رمضان کو ویلکم کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183. آپ نے اور میں نے کئی بار پڑھی، سنی، سمجھی اور سمجھائی ہے، لیکن ہر دفعہ یہ آیت ہمارے سامنے ہے، کیونکہ نماز کا ذکر تو قرآن پاک میں بہت جگہ پہ ہے، لیکن روزے کا باضابطہ تذکرہ اسی آیت پہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ روزے کے لفظ کو سن کر پریشان ہونے کی بجائے روزے کو خوشی سے رکھو، نبھاؤ. رمضان کے لفظ کے ساتھ ہی پریشان نہ ہو جاؤ، کیونکہ رمضان کے اعتبار سے لوگ مختلف قسموں میں بٹے ہوئے ہیں. کچھ تو لفظ رمضان سنتے ہی خوشی محسوس کرتے ہیں، اور کچھ پریشان ہونے لگتے ہیں. خوشی وہ محسوس کرتے ہیں کہ پہلی بات ہے کہ جن کے رمضان اور غیر رمضان میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، اور پریشان وہ ہوتے ہیں جن کا لائف سٹائل اتنا بدل گیا کہ ان کے رمضان اور غیر رمضان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا. اگر بغیر شعور دلائے آپ سے کوئی پوچھ لے کہ یہ بتائیے کہ آپ کے رمضان اور غیر رمضان میں کچھ فرق ہوتا، تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں زمین آسمان کا. تو آپ ایک جملہ نوٹ کیجئے گا کہ مومن کے رمضان اور غیر رمضان کا فرق زمین آسمان کا نہیں ہوتا. تھوڑے بڑے معمولات ہیں، بس اس میں تبدیلی ہے، اور اس پہ ہم زاد الخیر میں ڈیٹیل سے بات کر چکے. آج تو ہم یہ دیکھیں گے کہ رمضان کیا ہے. اور یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکار کر جو حکم دیا ہے وہ کیا ہے کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. پہلی بات تو دیکھیے، حکم ایمان والوں کو ہے. اپنے آپ کو اس لسٹ میں شامل کرنے کی دعا کیجئے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو یہاں خود کو مومن اور مسلمان کہتے رہیں، لیکن تیری کتابوں میں ہمارا کوئی اور ہی نام ہو. دوسری بات اس پہ صحابہ کرام کا عمل لیجئے کہ جب بھی کبھی یا ایھا الذین آمنوا سے کوئی آیت شروع ہوتی تو وہ کہتے کہ مومنوں، تمہارے رب نے تمہیں بہت دور سے پکارا ہے، کان لگا کر سنو. تو چلیے اس وقت ہی خود سے پوچھتے ہیں. اپنی جگہ پہ مطمئن ہو کر بیٹھ چکی ہوں کیا؟ میں اس وقت جو سن رہی ہوں اس کے ساتھ میرا دل دماغ بھی ہے، یا صرف میرے کان سن رہے ہیں؟ کیا صرف میرے جسم کے کان سن رہے ہیں، یا پھر میرے روح کے کان بھی سن رہے ہیں؟ جب تک محاسبہ نہیں کریں گے ہم سب اپنا اپنا، تب تک یاد رکھیے گا کہ ہماری زندگی میں خیر نہیں آئے گی. ہم سب کو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے آج کے سیشن کو لینا ہے کہ کیا میں رمضان کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح تیار کر چکی ہوں. کیونکہ مالک کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا. ہمارے ذہن میں لفظ رمضان آتے ہی سب سے پہلے روزہ ہی آتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا. مراد یہ کہ روزہ رکھنا فرض کیا گیا. رمضان کے روزے امت مسلمہ پہ فرض کر دیے گئے. یہ دین اسلام کے ان پانچ پلرز میں سے ایک ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے بنجل اسلامی علی خمسن والی حدیث میں بیان کیا. اور پلر کیا ہوتا ہے؟ بنیاد میں پڑی ہوئی چیز کیا ہوتی ہے کہ جس کو ہٹا دیں تو عمارت گر جاتی ہے؟ تو پہلی بات تو ابھی تک کی آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ رمضان کا روزہ فرض ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ لفظ رمضان جس کو آج آپ اور میں ویلکم کرنے کے لیے بیٹھے، آخر یہ کیا مہینہ ہے اور یہ روزے آتے کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آیت کے اگلے حصے میں، اگر آپ غور سے دیکھیے کہ گھبراتے کیوں ہو، تم پہ تو فرض کیے گئے، کتیبہ علیکم فریدہ علیکم ہے، فرض کیے گئے روزے، کما کتیبہ علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پہ، تمہارے باپ دادا پردادا اور اسی طرح ان کے آگے سے آگے جتنی نسلیں گزر چکی وہ سب روزے رکھتے تھے، فرض تھے ان پہ بھی، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور شروع میں سے لے کے ہر امت کے دور میں، ہر نبی کی شریعت میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں رہا. آج ہم مسلمانوں کے ساتھ روزے کا لفظ جڑ چکا ہے. کبھی کبھی بچوں کو اسکولس میں مشکل بھی پیش آتی ہے جب دوسرے ان پہ رحم کھاتے ہیں، تو اپنے بچوں کو یہ آیت دکھا کر بتائیے کہ فرض سب پہ کیے گئے تھے، آج شاید سارے مسلمان بھی نہیں رکھتے. یہ بھی جم بنا دیجئے اپنے ذہن میں، ایک کونے میں لکھ لیجئے کہ روزے فرض سب پر تھے اور آج شاید صرف ایمان والے بھی نہیں رکھتے. جب بھی کوئی قوم، کوئی ملت، کوئی مذہب کو ماننے والے اپنے دین کی کسی ایک بات پہ یا بہت ساری باتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ حکم کتابوں سے بھی نکلتا ہوا دکھتا ہے. یہ ایسی کہ کچن میں کام کرتے ہوئے آپ کوئی مشینری استعمال نہ کریں کچھ عرصہ، تو آہستہ آہستہ وہ کاؤنٹر سے ہٹ کے نیچے کیبنٹ میں اور کبھی کبھی پھر کیبنٹ سے نکال کر پینٹری میں بھی ڈال دی جاتی ہے. آج دنیا میں موجود مذاہب کو دیکھیے تو بعض دفعہ ایسا ہی لگتا ہے کہ اسلام بڑا سخت مذہب ہے، اس سو ریشنل، سو پکی. مسلمانوں کو دن میں پانچ نمازیں پڑھنی پڑتی، پھر روزے بھی رکھنے پڑتے، پھر حج بھی کرو، سانس گھٹتی ہے نا. تو کما کتیبہ علی الذین من قبلکم، اللہ نے بتا دیا کہ پابندیاں صرف اسلام میں ہی نہیں ہیں، ہر مذہب میں تھی. وہ کون سا ملک ہے جو قوانین کے بغیر چلے، اور وہ کون سا اسکول ہے جہاں رولز اینڈ ریگولیشنز نہ ہوں؟ لیکن جب لوگ عمل کرنا چھوڑتے ہیں تو آنے والے لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ ان کے مذہب میں کچھ پابندیاں ہی نہ تھیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے لعلکم تتقون، یہ ہے مقصد صیام. تو پہلی چیز جو آج ہم اپنے اس ویلکم رمضان میں دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، روزہ آپ کی میری تربیت کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے کو ہم ویلکم کرنے کے لیے بیٹھے کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ وہ ایک سالانہ یادگار ہے اس بات کی کہ اللہ نے تمہیں تقوی کی دولت دینے کا ارادہ فرمایا ہے. ہم جب تک رمضان کا ویلکم دل کی خوشی سے نہیں کریں گے تب تک رمضان ہمیں کچھ نہیں دے کر جائے گا. کتنے ہی لوگ ہیں کہ رمضان آیا تو جس حال میں تھے، رمضان گزرا تو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا، تھوڑا سا، اور رمضان جاتا ہے تو پھر پہلے کے پہلے. سولدن قرآن میں آتا ہے، کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر جتنی مرضی نیکیوں کی اور رحمتوں کی پھوہار پڑے، بارش پڑے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. ایک وقتی سا رنگ آتا ہے بس رمضان میں، اور وہ بھی شروع کے دو تین دن، اور آہستہ آہستہ پھر وہ شوق بھی پورا ہونے لگتا ہے. اندر کچھ نہیں جاتا، چٹیل زمین پہ، پتھریلی زمین پہ کوئی پھل تو چھوڑ دیجئے، جھاڑ جھنکار بھی نہیں اگتی. تو آپ اور میں دعا کریں کہ لعلکم تتقون، آپ اور میں اس سال رمضان کے بعد جو تحفہ لیں، اس سال جو ہمارا عید کا تحفہ ہو وہ تقویٰ ہو، اور جس کو تقویٰ مل گیا اس کو مقصد رمضان مل گیا. تو جملہ لکھ لیجئے، مقصد رمضان ڈائٹنگ نہیں، مقصد رمضان وزن کم کرنا نہیں. رمضان کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ ہمیں بھوکوں کی تشبیہ دے کر ان کا خیال دلواتا ہے، ہاں یہ ایک شکل تو ہے تقویٰ کی. تو ہم نے رمضان کو کوئی پوری طرح سے ہی سمجھا نہیں ہے. چند چیزیں نوٹ کیجئے گا کہ رمضان ہمیں کیا سکھانے آتا ہے. یہ لعلکم تتقون پہ ساری بات ہو رہی ہے ابھی تک کی، کیونکہ جب تک ہم مقصد نہیں سمجھتے کسی بھی چیز کا ہم اس میں آگے نہیں بڑھتے. آپ کسی بھی شخص کو کوئی پروجیکٹ دیں اور یہ نہ بتائے کہ اس پروجیکٹ کو کرنا کیوں ہے، وائے، تب تک وہ نہیں کرے گا، اس کا دل ہی نہیں کھلے گا. میں کیوں کروں محنت، میرا کیا معاملہ ہے، اور یہ اور وہ. तो आप किसी बच्चे से भी कोई काम करवाना चाहते हैं ना, तो आप उसको भी मकसद बताइए। तो रोज़े के मकासद क्या हैं, दोहरा लेते हैं, बातें तो बीसियों बार हुई, लेकिन जो हमारे साथी आज ही से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा वेलकम रमदान 2020, जिसके बाद अब कल से कुरान पाक का दौर करेंगे, दौरे रमदान होगा, तो उनके लिए चंद चीज़ें दोहराना चाहूँगी कि रमज़ान का मकसद क्या है। नोट कीजिएगा, ज़िंदगी को रमज़ान जैसी बना लें तो मौत ईद जैसी होगी। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इर्जे इला रब्बी की राधियतम मर्दिया, ए इत्मीनान वाली रूह चल पलट अपने रब की तरफ, इस हाल में कि वो तुझसे राजी और तुझसे राजी है। मोमिन की ज़िंदगी रमज़ान की है तो इंशाल्लाह उसकी आखरत जन्नत जैसी होगी। कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ़तुम फ़िल अय्यामिल खालिया, खाओ और पियो जो चाहो उन नेकियों की वजह से जो तुम दुनिया में कर चुके। तो बात यह है कि रमज़ान और रोज़ा इंसान की ज़िंदगी में एक तब्दीली लाता है। रोज़ा क्या है कि इंसान अल्लाह की मना की हुई चीज़ों से रुक जाए, और रमज़ान हर साल हमें यही सबक देने के लिए आता है। चलिए एक और आपको बड़ी ही समझ में आने वाली तारीफ दे देती हूँ कि रोज़ा है क्या। किसी बच्चे से पूछिए रोज़ा क्या होता है, कहते हैं खाते पीते नहीं है। यानी सिर्फ खाते पीते ही नहीं, बल्कि रोज़ा क्या है, लअल्लकुम तत्तकून। तो रोज़े का मतलब अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना है, चाहे यानी आप लिख लीजिए कि ख्वा इसकी जद में खाना पीना भी आ जाए। दोबारा बोलती हूँ, रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, ख्वाहिशों से रुकने का नाम है। और एक और लिखिए ज़रा रोज़े का मकसद, तत्तकून। रोज़ा इस बात की तरबियत है कि इंसान उन चीज़ों को छोड़ दे जिनको छोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। और एक और सबक लिख लीजिए, मुसलमान से ये मुतालबा है कि वो नाजायज़ चीज़ों से हमेशा के लिए रोज़ा रख ले, और रमदान इसी किस्म की रोज़ादाराना ज़िंदगी की एक खसूसी तैयारी का नाम है। एक और चीज़ लिख लीजिए, रोज़ा इस बात का सबक है कि कभी एक जायज़ चीज़ भी नाजायज़ हो जाती है, और एक मतलूब चीज़ भी गैर मतलूब बन जाती है। और लअल्लकुम तत्तकून, इस्लाम परहेजगारी का नाम है, और रोज़ा इसी परहेजगाराना ज़िंदगी का तरबियती कोर्स है। एक और कोट लिखिए, रोज़ा भूख प्यास की सालाना रस्म नहीं, बल्कि अखलाकी डिसिप्लिन की सालाना तरबियत है। यानी वही बात है कि इबादत को आदत नहीं बनाना कि आदतन ही करने लगे, और रोज़ा अपने आप को काबू में रखने की मशक है, खाने पीने में भी और दूसरे मामलात में भी। ये हैं लअल्लकुम तत्तकून के चंद मफहूम। तकवा बहुत ही खूबसूरत चीज़ का नाम है। जब आपकी ज़िंदगी में तकवा आ जाता है, आपके मामलात दुरुस्त हो जाते हैं, आप लोगों के साथ जीना मरना कैसे करना है वो आ जाता है। और हकीकत यह है कि तकवा के बगैर की ज़िंदगी ज़िंदगी बेबंदगी है। तकवा ही के साथ तो इंसान अल्लाह ताला को राज़ी करता है, और तकवा ही के साथ इंसानों के हक अदा करता है। पीछे हम सुन चुके कि तकवा इंसान की दो आंखों की तरह है, एक से गुनाह के मौके चुभने लगते हैं, देखते ही बंदा कांप जाता है कि ये रेशम की रस्सी नहीं, ये तो सांप है। और दूसरी आंख से नेकियों के मौके दिखने लगते हैं, कि जिसकी वजह से इंसान बड़ी से बड़ी नेकी सिर्फ ये कहकर नहीं छोड़ देता कि नहीं ये तो मेरे गिरोह से नहीं, मैं इसको आगे क्यों करूं, ये तो मेरी जमात का बंदा ही नहीं, और मैं इसको स्पॉन्सर नहीं कर सकता, और मैं इसको प्रेजेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो फलां से जुड़ा हूँ। ये तकवा के ना होने की दलील है। हकीकत यह है कि इंसान जितना ज़्यादा अपने अंदर तकवा रखेगा, उतना अल्लाह के साथ उसका मामला भी अच्छा होगा, और उतना ही बंदों के साथ भी। आप इंसानों के साथ भी अपने मामला दुरुस्त रख ही नहीं सकते जब तक कि आपके अंदर तकवा ना हो। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं खुद से, फिर ये तकवा मिलेगा कहाँ से? एक तो रोज़े से मिलेगा और दूसरे कुरआन से। आयत 185 सूरत अल बकरा, शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। माहे रमज़ान वो है जिसमें कुरान उतारा गया। तो कुरान क्या है? जो लोगों को हिदायत करने वाला है, और जिसमें हिदायत की हक को बातिल की तमीज़ की निशानियां हैं। तुम में से जो शख्स भी इस महीने को पाए उसको चाहिए कि रोज़ा रखे। हाँ, जो बीमार हो या मुसाफिर हो उसे दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह ताला का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है, सख्ती का नहीं, वो चाहता है तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह की दी हुई हिदायत पर इसकी बड़ाइयाँ बयान करो और इसका शुक्र अदा करो। तो रमज़ान की बहारें कुरान के साथ हैं। आप देखिए कि जब भी रमज़ान आता है ना, तो उस वक्त हमें तलब महसूस होती है, पहले से ही ख्वाहिश होने लगती है कुछ करूं, जैसे क्रेविंग होती है ना, कुछ घंटे ना खाएं तो फिर भूख लगती है, दिल में एहसास आता है अब कुछ खाएं। रमज़ान के आते ही हमारे दिलों में भी कुछ इसी किस्म के ख्याल आते हैं। तो अगर नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए तो रमज़ान फिर क्या है, तीन चीज़ों का मजमुआ है। एक तो है सियाम, जिसको आपने मैंने समझना, जो हम माशाल्लाह बचपन से ही सुनते सुनाते रखते रखाते आए। दूसरी चीज़ कुरान है और तीसरी चीज़ क़याम और दुआएं। शहर रमदान अल्लज़ी कहकर अल्लाह ने ये बता दिया कि रमज़ान कुरान का महीना है। जिस रमज़ान में कुरान आ गया, हिदायत आ जाएगी। लिख लीजिए, एक छोटी सी बात शऊर से बोलने वाली हूँ। एक तो वो हमारी डेट ऑफ बर्थ थी, जिस दिन हम पैदा किए गए, DOB, बहुत अहम होती है, हर जगह इस्तेमाल होती है, हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे ही नहीं होते उसके बगैर। एक डेट ऑफ बर्थ हमारी हिदायत के एतबार से भी होती है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह की तरफ एक कॉल मंसूब किया जाता है कि दो दिन इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही अहम होते हैं। एक वो दिन जिस दिन वो पैदा होता है, ज़ाहिर बात है कि कुछ ना होने से हो गया, हल तआला इंसान ही न मिन दहरी लम यकुन शैय मस्कूरा, हम कोई काबिले जिक्र चीज़ ही नहीं थे अपने पैदाइश में आने से पहले, किसी को पता भी नहीं था। फिर बच्चा दुनिया में आता है तो उसके साथ साथ फिर सब कुछ होने लगता है। तो दिन पैदाइश का अहम है, लेकिन कहते हैं कि एक दूसरा दिन भी इंसान के लिए बड़ा ही अहम है, और ये वो दिन है जिस दिन उसको ये पता चलता है कि मैं क्यों पैदा किया गया। और ये आपको पता चलता है जब माशाल्लाह इस वक्त भी जिस तरह से आप बैठे हुए हैं, मुसहफ सामने खुलता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू करते हैं और इंशाल्लाह फिर सूरत नास पे पूरा करते हैं। तो लिखिएगा, ये रमज़ान शायद आपकी न्यू डेट ऑफ बर्थ हो। आप में से जो लोग कई साल से कुरान के साथ शौरी तौर पे जुड़ चुके हैं, समझने लग गए हैं, और जुड़ने को मैं आसान कर दूँ नए साथियों के लिए कि ये जुड़ना क्या होता है, क्योंकि कुरान से ताल्लुक़ की हमारे कल्चर में बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत कुछ है, लेकिन ये जुड़ना नहीं समझ आता। तो जुड़ने से मुराद ये है कि जब आप कुरान पढ़ते हैं तो उसको समझते हैं बगैर तर्जमे के, उर्दू तर्जमों और इंग्लिश तर्जमों के बगैर, सिर्फ मुसहफ में से अरबी कुरान खोलते हैं और आपकी आंखें आंसू से रोती हैं, और इसकी तलब और इसकी कह लीजिए कि ख्वाहिश पैदा होती है दौरे कुरान से। तो लिख लीजिए, आप में माशाल्लाह जितने भी साथी इस वक्त सुन रहे हैं और जो बाद में भी सुनेंगे, सबके लिए ये पैगाम है। आज की डेट लिख लीजिए, आज हमारा वेलकम है, कल हमारा पहला पारा है। लिख लीजिए इस बात को अभी से कि जिस दिन सूरत फातिहा होगी, और मेरी इस वक्त मुराद उन सब साथियों से भी है जिनको आज तक मौका नहीं मिला दौरे कुरान सुनने का, उन सब से भी है कि शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अगर आज आप नियत कर लें इस रमज़ान में ये तीन काम ज़रूर करने हैं, रोज़े तो रखने ही हैं इंशाअल्लाह ताला, उसमें तो किसी को कोई शक नहीं है, क़याम और दुआएं भी हम करते हैं रात में तरावीह की सूरत में, और दुआएं तो सारा दिन मांग सकते हैं, लेकिन इस साल मैंने इसको शहरुल कुरान बनाना है। बोलिए इंशाअल्लाह, क्योंकि कुरान पाक आपकी ज़िंदगी में इसकी तलब लाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे, क्यों पढ़ें कुरान, शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान क्यों कहा अल्लाह ने, इतनी इज्जत दे दी कुरान को। देखिए ना, हमारे अंदाजे के मुताबिक अगर ये आयत होती तो कैसे होती, शहर रमदान अल्लज़ी तसूमु, रमजान का महीना वो है जिसमें तुम रोजे रखोगे या रखो। अल्लाह सुब्हान तआला क्या कह रहे हैं कि शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, तो यकीनन फिर हमें मालूम होना चाहिए कि कुरान की कोई खास फजीलत है, द सिग्निफिकेंस ऑफ कुरान। क्यों पढ़ूं, इतना वक्त क्यों लगाऊं, मैं उसकी जगह नफिल पढ़ लूं। जी नफिल भी पढ़िए, सब कुछ कीजिए, पर कुरान को समझे बगैर नहीं। देखिए आप जिस प्लेटफॉर्म से ये चीज़ सुन रहे हैं ना, उसका तो नाम ही नूरुल कुरान है, और अगर मनहज और मेथडोलॉजी आपको पता चले, क्योंकि बहुत सारे नए लोग सुनेंगे तो वो सोच सकते हैं कि हम कौन, किस गिरोह, किस फिरके से, किसी गिरोह से नहीं, किसी फिरके से नहीं, तासुबात से ऊपर उठकर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की बात पहुंचाने वाला ये प्लेटफॉर्म है। कुरान हर घर में, हर दिल में, कुरान के नूर से घरों को मुनव्वर कर दो, कुरान के नूर से दिलों को मुनव्वर कर दो, नस्लों को पाक कर दो, नजरों को पाक कर दो। तो कुरान ही तो वो क्राइटेरियन है। इस दुनिया में कुरान वाहिद चीज़ है जो गैर मखलूक है, हम सब मखलूक हैं, वी आर क्रिएशंस। और कुरान क्या है? बल हुआ कलामुल्लाह। तो कुरान पाक की कुछ फजीलतें ले लेते हैं ताकि हमारा दिल मचलने लगे कल से पहला पारा सुनने को। तो सबसे पहली बात है कि कुरान अल्लाह का महफूज कलाम है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ुन। अल्लाह ताला सूरह हिजर में फरमाते हैं, बेशक हमने ही इस कुरान को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करेंगे। एक जुमला लिखिएगा तो बात वाज़ेह हो जाएगी। पिछली किताबें भी अल्लाह की तरफ से थीं, वो भी मुकम्मल थी अपने दौर के तकाजों के मुताबिक, लेकिन उनकी हिफाजत का वादा अल्लाह ने नहीं किया। हुआ क्या कि वक्त के साथ साथ जब लोगों ने उन किताबों पर अमल छोड़ा और किताब को कॉपी बना लिया, ये भी एक जेम है, जब बुक को एक्सरसाइज बुक बना लिया जाए तो वो बुक नहीं रहती। और कुरान इसके बारे में बहुत कहता है, यक्तुबून अल किताब अभी अईदीहिम, किताब को अपने हाथों से लिखते हैं और फिर कहते हैं हाजा मिन इंदिल्ला। तो आज तो ये तक नहीं पता कि असल में किताब किस जुबान में नाजिल हुई थी। आप पिछली चार इल्हामी किताबों को देखिए जो बड़ी मारूफ हैं कुरान समेत, कुरान की जबर जेर महफूज है। आप कोई भी काम करें, मैं भी और आप भी, चाहे हम खाना बनाएं, चाहे हम टेक्निकल पे हों, चाहे हम किसी की मदद करें, हमें इस बात की श्योरिटी चाहिए होती है कि जो काम मैं करूँगी, जो खिदमत मुझसे ली जाएगी, इसको सिक्योर रखा जाएगा, इसको ज़ाया नहीं किया जाएगा, इससे फ़ायदा उठाया जाएगा। कुरान अल्लाह का महफूज कलाम है, इस बात से फिर आपका मेरा दिल ठुक गया, मेरा तो ठुक गया अल्लाह के हुक्म से, और आज नहीं कई साल से ठुका, अगर अल्लाह आपका भी ठुका दे, कि सबसे ज़्यादा वर्थ इट मेरा टाइम, मेरी एनर्जी, मेरी स्किल्स, मेरा माल इस कुरान की खिदमत करना है। हम सब कुरान के खादिम हैं, खादिमातुल कुरान कह दीजिए ख़वातीन को, और ब्रदर्स हैं तो वो खादिमे कुरान बन जाए। मेहनत महफूज हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी को रंग लग जाएंगे। इसके अलावा जो कुछ भी हम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं अल्लाह की रहमत से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट स्टाइल से नेकियों के काम करने वाले बेशुमार लोग हैं, लेकिन सच पूछिए तो इस कुरान पे वक्त लगाने वाले सबसे महफूज लोग हैं। चलिए एक और वजह लेते हैं इस कुरान को पढ़ने की, कि ये किताब हिदायत भी है और इसको अल्लाह ने नूर भी कहा और ज़िक्रा भी कहा, द बुक ऑफ गाइडेंस एंड इनलाइटमेंट, ज़ालिकल किताबुला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब हिदायत कैसे है? ये रोड मैप है, ये आपका मेरा नेविगेटर है। ज़िंदगी कैसे गुजारो, जन्नत में कौन सा रास्ता जाता है, किधर से डीट्रैक हो गए तो जन्नत के बजाय जहन्नम में जाओगे। आप किसी को कोई मशीन दें लेकिन उसके साथ बुकलेट ना दें हाउ टू यूज़ की, तो कितने खतरे हैं। हो सकता है उसको पानी से धो दे और उसको पानी नहीं लगाना, हो सकता है 220 की जगह 420 के वोल्टेज में डाल दें, कितने हादसे होंगे उस वक्त। तो जैम लिखिए, इससे भी बड़े हादसे उस वक्त होते हैं जब लोग कुरान को किताब हिदायत बनाने की बजाय सिर्फ वजीफों की किताब, बरकत की किताब, सिर्फ कस्में खाने की किताब, इसको सिर्फ बरकत के लिए पढ़ने की किताब, और बेटियों की शादी के मौके पर इसको सर पे रखने की किताब बना ले। तो आज हमने इस कुरान को सब कुछ बनाया। देखिए इसमें भी कुछ बेनिफिट्स अच्छे होंगे, लेकिन लव सिर्फ आपको बता रहा है, नॉट ओनली दिस। मैं इसको ऐसे समझती हूँ जैसे किसी को तोप मिले और वो उसे मक्खियाँ मारने लगे। क्या ये कुरान सिर्फ इसलिए आया था कि हम इसको उर्सों पे पढ़ें और इसको ताकों में सजाएं? नहीं, आज के दौर का तकाजा कुरान को किताब हिदायत बना दें, यह आपको जीना मरना सिखाएगी, आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाएगी, यह आपको बच्चों की तरबियत करना सिखाएगी। बल्कि हज़रत उमर फरमाते थे, अपने बच्चों को कुरान सिखा दो, कुरान उन्हें सब कुछ सिखा देगा। तो इंशाल्लाह हमने नियत करनी है कि अब हम जिस लेवल पे हैं, अगर पहले से थे तो बिस्मिल्लाह, अब तो और पुख्तगी आएगी इंशाल्लाह। मैं एक सवाल करती हूँ, आप भी खुद से कीजिए, क्या आप पूरे कुरान को शुरू से आखिर तक कभी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं? इसका जवाब खुद को दीजिए, किसी को किसी से कुछ भी लेना देना नहीं, आपको मुझे खुद को जवाब देना है, इतनी जिंदगी जो गुजरी, और इस पे अपनी मौजूदा उम्र को लीजिए, अगर आप 30s में हैं तो पिछले 10 शुरू के निकाल दीजिए, ठीक है, भोलपने की उम्र थी, अभी शौरी नहीं था। 10 साल से ऊपर अपनी जिंदगी को लाइए और फिर खुद से पूछिए, क्या मैं पूरे कुरान को पढ़ चुकी हूँ? हाँ, आप कहेंगे एक तो पढ़ा था वो मौलवी साहब के साथ जो घर में आते थे या मस्जिद में जाते थे और हम कुरान पढ़ते थे, पहले हमारी रस्में बिस्मिल्लाह हुई और उसके बाद फिर हमारी आमीन हो गई, और बाज़ की तो ऐसी आमीन हुई कि उसके बाद फिर कभी दोबारा पूरा पढ़ने का मौका ही ना मिला। तो इस कुरान को अगर आपने मैंने समझने के लिए वक्त नहीं दिया, इस पे मेहनत नहीं की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपसे और मुझसे मायूस नहीं है, एक और मौका आ रहा है, मौके तो आएंगे। अब आप और मैं उसके साथ क्या करते हैं, ये चीज़ आपका मेरा मुस्तकबिल या संवारेगी या बिगाड़ेगी। ज़िंदगी में अल्लाह ताला कामयाबियों के बहुत सारे मौके देता है, तो उन्हीं से एक मौका क्या है कि ये किताब हमारे लिए किताब हिदायत बने। और इस पे मेरे जहन में भी आया कि एक लेक्चर है कुरान किताब हिदायत, इंशाल्लाह ताला आज हम स्टूडेंट्स को जो भी लोग रेगुलर हैं उसका लिंक भिजवा देंगे ईमेल में, तो आप उसको पहली फुर्सत में सुन लीजिए थोड़ा थोड़ा करके, तो इंशाल्लाह रमज़ान में दाखिल होने से पहले पहले इस पे दिल ज़रूर जमेगा कि कुरान किताब हिदायत कैसे बनता है। फिर अगली देखिए चीज़, नूर और जिक्र। नूर क्या है? रोशनी, बल्ब, ट्यूबलाइट। अंधेरे में सांप और रस्सी का फर्क नहीं मालूम होता। आप किसी चीज़ को बहुत नरम सी रस्सी समझ के उससे खेल रहे हैं अंधेरे में, और एकदम कोई बल्ब जला दे, चीखें निकल जाएंगी कि वो तो रस्सी नहीं, वो तो सांप है। हम अपनी ज़िंदगी में गुनाहों की रस्सियाँ थामे होते हैं, और इतने में कोई आके कुरान का नूर जगा देता है, किताब से जोड़ने की कोशिश करता है, आपको कहते हैं एक दफ़ा सुन लो। हो सकता है आज भी आप में से कुछ लोग किसी के कहने पे आए, बहुत सारे लोग जिनको खुद समझ आ जाता है ना कि कुरान है क्या, फिर वो दूसरों को कहते हैं एक बार सुन लो, ये कुरान की रोशनी ज़िंदगी में आएगी, उसके बाद फिर आप किधर जाएं कहाँ जाएं अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाएगा। तो ये किताब आपको अच्छे बुरे का फ़र्क बताती है, क्योंकि आपके मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अंधेरों से निकले। दुनिया में कोई अंधेरे को पसंद नहीं करता, अंधेरा मायूसी की और डिसअपॉइंटमेंट की और डिप्रेशन की अलामत है। नॉर्वे में बहुत सारे लोग सर्दियों में डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि सूरज नहीं दिखता, और उस तरह नहीं दिखता जैसे इंसान की ज़रूरत है। तो लिहाजा अंधेरे और जिक्र। जिक्र क्या है? याद। कुरान को पढ़ते हुए अल्लाह की याद आती है, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जुड़ता है बंदे का। तो जितना ज़्यादा कुरान पढ़ेंगे रब याद रहेगा। हमें तो नमाज में भी रब याद नहीं आता, हालांकि मिसलात जिक्री। नमाज अदा करो मेरी याद के लिए, तो क्या पता चला कि कुरान इसलिए पढ़ना है कि हमें रब याद रहे, रब के साथ ये मामला हो। फिर अगली इसकी खूबी देखिए कि ये बाबरकत और मुअज्ज़ज़ किताब है। बरकत क्या होती है? थोड़े में ज़्यादा होना। चीज़ थोड़ी थी, आप अक्सर नहीं कहते आज खाने में बहुत बरकत पड़ी, आपने तो सिर्फ अपने घर वालों के लिए बनाया और ऐन वक्त पे मेहमान आ गए, तो ये कैसे हो सकता है कि फिर आप मेहमान को छोड़कर खुद खाने लगे और बाद में आप क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर, ऐसी बरकत पड़ी कि सब खा गए और माशाल्लाह खाना भी पूरा रहा। ये आपके और मेरे साथ होगा। चंद जुमले बोल देती हूँ बरकत पे, जैसे माल देने से बाकी माल में बरकत पड़ जाती है, इसी तरह वक्त इस किताब को देने से, अल्लाह को देने से वक्त में बरकत पड़ती है। आप जवानी देना शुरू करें, यानी जवानी में इस किताब की खिदमत शुरू कर दें, आप देखेंगे कि जवानी में बरकत आएगी, आप बूढ़े ही नहीं होंगे। लोग कहेंगे अच्छा, हम तो समझते थे आप बूढ़े हैं, क्योंकि अक्सर दीन का काम बूढ़े ही लोग करते हैं। और इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में बरकत, आपके सुकून में बरकत, आपकी खुशियों में बरकत, मोहब्बतों में बरकत, और वो कुछ मिलेगा जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं है, आपको कभी उसका ख्याल तक ना गुजरा, ये कुरान आपकी ज़िंदगी इतनी बबरकत कर देगा। और फिर मुअज्ज़ज़ किताब है, और ये किताब मुअज्ज़ज़ कैसे है, खुद भी इज्जत वाली है और जो इसको थामता है उसको भी बाइज्जत करती है। क्या थे अबू बकर और सिद्दीक बन गए, उमर फारूक बन गए, उस्मान रजी अल्लाह अन्हो को गनी कर दिया, और इसी तरह अली क्या बन गए? ये किताब आपकी ज़िंदगी में इज़्ज़त ले आती है। इन अल्लाह यरफ़ बिहाज़ल किताबी व यदाउ बिहा खरीन। तो इस किताब के साथ ताल्लुक़ जोड़ेंगे तो आपको इज़्ज़त का असल मफ़हूम समझ आएगा। फिर इसी तरह से फसीह व बलीग है। फुसत कहते हैं किसी भी चीज़ को बहुत इन डेप्थ बयान करना, और बलीग पहुंचाने वाली यानी दिल में उतरने वाली किताब है। क्या हकीकत में आप और मैं इस किताब के साथ ऐसा ताल्लुक रखते हैं, या वाकई इस किताब की गहराइयां हैं, इन डेप्थ है? अभी तो हम एक क्विक सा करेंगे सेशन ताकि हमारे जहन तैयार हो जाए अल्लाह की रहमत से। फिर बाद में जब आप थोड़ा सा मजीद वक्त देंगे तो आपको इसकी इन डेप्थ चीज़ें भी मिलेंगी। तो आपने मैंने क्या करना है, इस किताब से ताल्लुक़ इसलिए जोड़ना है कि हम एक समंदर के अंदर से मोती चुन सकें। फिर हिकमत से भरी किताब है। आज भी बहुत सारे लोग हैं उनको हिकमतें नहीं आती। क्या करूं, समझ नहीं आता, वक्त पे बात नहीं समझ आई। घर आई तो मुझे याद आया कि मुझे तो ये कहना था उनको, वो कहना था। सोचिए आप, अब अगर आपको वक्त पे बात याद ना आए और घर आकर बात याद आए तो क्या फ़ायदा उस बात का? तो ये कुरान आपको हिकमत देगी। कितनी बीवियां हिकमत की कमी की वजह से खाम खा के जुल्म सहती हैं। बच्चों से कैसा सलूक करना था, बाज माएँ कहती हैं पता ही नहीं था उस वक्त, अकल ही नहीं थी, ऐसे ही बच्चों को बिगाड़ दिया। लेकिन असल बात यह है कि ये किताब आपको मुझे बेहतरीन तरीके से अल्लाह की तरफ आना सिखाती है। तो आपको मुझे क्या करना है, इस किताब से ताल्लुक़ जोड़ना है ताकि हमारी भी ज़िंदगी में हिकमत आए। और हिकमत क्या है ये भी लिख लीजिए चंद जुमले। सही वक्त पे सही फैसला करना। मतलब खाना पकाने की हिकमत क्या है कि नमक मिर्च का इस्तेमाल सही रखें, कुकिंग टाइम सही रखें। तो अगर आपकी मेरी ज़िंदगी में हिकमत आ गई तो आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ होने वाला है आपके साथ। ये तो जब इंसान की ज़िंदगी में ये चीज़ आती है ना, फिर उसको समझ आता है। और यकीन कीजिए कि जैसे हम कभी बचपन की कोई बात सुने जो हमारे मुंह से निकलती थी तो शर्मिंदगी होती है ना, कुरान पढ़ने के बाद जो सबसे बड़ा रिग्रेट होता है ना, अल्लाह अकबर कबीरा, वो ये होता है कि मैंने ये देर से क्यों शुरू की, मैंने जल्दी क्यों नहीं पढ़ी, ये मैं क्यों पीछे ले आई इसको अपने। और आप महसूस करते जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में ये रिग्रेट इतना बढ़ता है कि बास लोग कुरान पढ़ने के बाद बेचैन होते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कोई बात नहीं, अल्लाह हर काम को वक्त पे करता है, उसको पता है, इसलिए आप गम ना करें। अल्लाह की रहमत से एक वक्त आएगा कि जब अल्लाह ताला आपके साथ अच्छा मामला करेगा। फिर अगली चीज़ देखिए, बेमिसल किताब है। ऐसी किताब के जिसकी कोई मिसाल नहीं दे सकता। दुनिया में अक्सर चीज़ों के बारे में लोग कहते हैं नक्कालों से होशियार रही है। लिख लीजिए कि इस किताब की तो मिसाल की भी कोई मिसाल नहीं है, जैसे अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की कि आप और मैं हमेशा इस चीज़ पे नज़र रखें कि ये किताब हकीकत में हमारे वक्त का सही इस्तेमाल है। फिर इसके बाद देखिए कि मुहकम, मुफस्सल, वाज़े और आसान किताब है, यानी हुक्म भी देती है। अल्लाह अकबर कबीरा, सोचिए ज़रा। और आपकी ज़िंदगी में जो मामलात आते हैं उसको खोल खोल कर बयान भी करती है। क्लियर गाइडेंस है, वाजे है और बहुत आसान है। वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्री फ़हल मिन मुद्दकिर। ये किताब बहुत प्यारी किताब है, शान वाली बाज़मत किताब है। इसकी शान के तो क्या कहने, इतनी शान से उतरी कि अल्लाह ने इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र कह दिया, यानी जिस रात में ये किताब नाज़िल हुई अल्लाह ने उसको कदर की रात बना दिया। फिर ईमान वालों के लिए शिफा है, जिस्मानी, कल्बी और रूहानी बीमारियों के लिए। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का हल कुरान, इमोशनल प्रॉब्लम्स का हल कुरान, फिजिकल प्रॉब्लम्स का हल कुरान। है आज कोई बीमार, हॉस्पिटल्स पैक्ड हैं, किधर जाए, होगा क्या? आज इस किताब को शऊर के साथ इंसानियत तक भेज दीजिए, आप देखेंगे कि किस तरीके से ये किताब मोजज़ा बनती है। जितना आपको पैरासीटामोल और टाइलनॉल पे एतबार है, सिर्फ उतना ही एतबार हम इस किताब पे कर लें तो हमारी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएं। आजमाइश शर्त है और ईमान लाना इस बात पे लाजिम है। तो ये शिफा है, और सबसे बढ़ के ظالموں کے لیے باعث خسارہ ہے۔ یہ بڑی ہی عجیب بات ہے، ظلم کرنے والے کا دل اس کتاب میں نہیں لگتا، یہ ایک اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ کا کتاب میں دل لگے، قرآن آپ کو اچھا لگے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ کتاب آپ کے لیے خوشی کا باعث ہے، اور سننے کو دل کرتا ہے، اور پڑھنے کو دل کر رہا ہے، اور آگے بھیجنے کو دل کر رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت سے اللہ کی نظروں میں بھی مقام ٹھیک ہے، اور بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ ہوتی ہے۔ لیکن بس ایک شخص کتاب سن نہیں سکتا، اس کے گلے میں پھانس کی طرح چبھتی ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں، ظلم کرنے والے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی مگر تو ہی، پاک ہے تو، میں ہی ظالم تھا۔ تو انسان سے ظلم ہو جاتا ہے، گو کہ انسان خود ظالم نہیں ہے، اور کبھی خود کو ظالم مت کہیے۔ قرآن پڑھنے کے اتنے خوبصورت فوائد، میرا ایمان ہے کہ آپ کا دل اس پہ مائل ہو چکا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے کا ضرور ہی فائدہ ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان اس مہینے میں اور اس سے اگلے اور پچھلے باقی 11 مہینوں میں کوئی فرق ہے؟ کیا ہم رمضانی مسلم بن جائیں یا پھر غیر رمضان میں کچھ نہ کریں؟ دیکھیے، فرق سمجھ لیجیے۔ شہر رمضان، اللہ نے رمضان کا لفظ قرآن میں رکھا، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا نام قرآن پاک میں ہے۔ تو اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، تھوڑی سی دہرا لیتے ہیں۔ فذکرن ذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرتی ہی رہنا چاہیے، اس سے ایمان والوں کو خوشی ہوتی ہے۔ بچے کو ایک بات کئی بار کہنی پڑتی ہے، تو انسان کو بھی ایک بات کئی بار کہنی اور سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کی فضیلت جاننے کے بعد اب رمضان کی کیا فضیلت ہے؟ اس پہ الحمدللہ پورے فولڈرز ہیں، آپ اگر ویب سائٹ پہ جا کر رمضان کے ٹاپک میں پری لوڈڈ لیکچرز لیجئے تو کم از کم 15 سے 20 کے نام تو مجھے بھی یاد ہیں، اور آپ کسی سے بھی سنیے۔ لیکن ذہنی تیاری کے لیے رمضان کی فضیلت کی باتیں سننی چاہیے۔ ہم پچھلے تقریباً 3 ویک سے اس پہ گاہے بگاہے بات کرتے ہی آ رہے ہیں، جو کہیں اپلوڈڈ بھی ہے۔ اس وقت صرف ان کا خلاصہ ہے۔ پہلی بات ہے کہ رمضان شہر الغفران، مغفرت کا مہینہ ہے۔ انسان اپنے گناہوں کی جو آگ جلاتا ہے نا، نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے، اور کبھی کبھی سستیوں کی وجہ سے، اور کبھی کبھی شیطان کے بہکاووں میں آنے سے، رمضان اس آگ کو بجھانے کا مہینہ ہے۔ انسان گناہ کے قریب جاتا ہے، رمضان آتا ہے، رحمت کی بارش پڑتی ہے اور بخشش ہوتی ہے۔ اس پہ تو زاد الخیر کا پہلا لیکچر day 1 کا آپ اگر رزق کی کنجیاں دیکھ لیجئے تو اس میں ساری بات ہی توبہ استغفار پہ ہوئی، مغفرت ہے۔ ہم نے آپ نے اس رمضان میں اس سوچ کے ساتھ قدم رکھنا ہے کہ اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ پھر دوسری بات ہے کہ رمضان شہر التقویٰ ہے، تقویٰ کا مہینہ۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ کہ گناہ کرنے سے پہلے پتہ لگ جائے کہ یہ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، یہ آگ ہے، یہ جہنم ہے۔ کچھ کو گناہ کرنے کے دوران سوچ جاتا ہے کہ غلط بٹن دبا دیا، کبھی ایسا ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ بھی، ایک دم احساس اترے کیا کر دیا، تو پھر آپ پیچھے آتے ہیں۔ اور کچھ بڑے ہی بد نصیب ہوتے ہیں کہ جن کو گناہ کرنے کے بعد پھر احساس ہوتا ہے کہ وہ خو گناہ کیا۔ لیکن ادھر بھی تقویٰ ہے الحمدللہ، لیکن بہت لو سگنلز کے ساتھ، فلکسچویٹڈ تقویٰ۔ لکھ لیں کہ کچھ کا تقویٰ فلکسچویٹڈ ہے، گناہ کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے غلط کیا، لیکن الحمدللہ آپ اس کو بھی متقی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں لفظ متقی آتے کیا آتا ہے؟ نیک، پرہیزگار، اور ایک خاص گیٹ اپ نہیں۔ متقی وہ ہے جس کو اپنے گناہ چبھنے لگے، جو خود کو نیک بنانا چاہتا ہے، اور یہ وہ سوچ ہے کہ جس کے بعد تو پھر راستہ کھلتا ہے، اور جس کے بعد تو حقیقت میں پھر آپ اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اللہ از واچنگ بھی۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس کو تقویٰ کا مہینہ بنانا ہے۔ جتنا زیادہ تقویٰ دل میں آتا جائے گا، اتنا زیادہ اللہ کی رحمت اور اس کی دیوی توفیق سے آپ کانشیس ہوں گے۔ کوئی دیکھ رہا ہو تو ماسی بھی کام اچھا کرتی ہے، امتحان دیتے ہوئے بچے کے سر پہ اگر منتظم کھڑا ہو جائے تو ہاتھ کانپنے لگتا ہے۔ کیا بنے گا اس بندے کا جس کو अल्लाह की मौजूदगी का और उसके देखने का एहसास हो। इन्ना अलैकुम ला हाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़लून। तुम्हारे ऊपर तो निगेबान लगाए हुए हैं, एग्ज़ामिनर्स खड़े हैं तुम पे। तो जब तकवा आता है ना तो इंसान फिर डर जाता है। आपका मेरा गोल क्या है? फ्लक्चुएटेड यानी लो सिग्नल वाले से उठ के फास्ट सिग्नल्स तक जाना है। गुनाह करने से पहले ही पता चल जाए कि ये गुनाह, ये है तकवा की मेराज। इंशाल्लाह हमारा गोल इस दफ़ा यही है। हर एक के पास तकवा होता है ये तो याद रखिएगा। इवन क्रिमिनल्स जिनको आप चोर डाकू लुटेरे भी कहते होंगे, उनमें भी किसी हद तक होता है, लेकिन वो इतने लो सिग्नल्स हैं कि कनेक्ट नहीं हो पाती चीज़, कनेक्शन बिल्ला कमज़ोर है। फिर देखिए रमज़ान शहरुस सब्र है, सब्र का महीना है। और सब्र क्या है? नफ्स पे कंट्रोल, नफ्स पे काबू पाइए। आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी कैसे है? शुतर भी मुहार नहीं है। और सब्र की तीन चार किस्में तो बड़ी मारूफ है, जिसमें सबसे खूबसूरत क्या है कि गुनाह के मौके पे रुक जाना और नेकियों के करने पे जाना। सब्र की आला तरीन किस्म क्या है कि अल्लाह ने जो काम करने को कहा है उसको कीजिए और उस पे जो तकलीफ आए सब्र कीजिए। वामुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, ये सब्र है। इन्नल्लज़ीना आमनु वामिलुस्सालिहात, सब्र की किस्म है। और वतवासो बिलहक वतवासो बिस्सब्र, ये सब्र की किस्म है। तो आपको मुझे इस बात की ज़रूरत है कि अपने अंदर सब्र लेकर आए। और वैसे फिज़िकल सब्र है, खा नहीं सकते, खाना मौजूद है। और सैरी को दिल नहीं कर रहा खाने को, लेकिन खाना पड़ेगा। इससे खूबसूरत ट्रेनिंग सेशन हो सकता है मेरा आपका। फिर इसी तरह से आप देखिए कि सब्र में दुख सुख के वक्त में भी अपने आप पर काबू पाना है। और इसी तरह से रोज़ा तो वो देख सब्र है। फिर रमज़ान शहरुल कुरान है, कुरान का महीना है। इस पे तो बात हो गई। इंशाल्लाह इस साल रमज़ान में हम अपने दिलों पर कुरान की बारिश बरसाएंगे। आमतौर पे हम सादा कुरान बहुत पढ़ते हैं और इस साल भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन एक दफ़ा समझ के पढ़ने वाला कुरान रखेंगे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से रमज़ान गुजरने के बाद हमारे दिलों से गुनाह धुल चुके होंगे, नाफरमानियाँ करने का ख्याल भी नहीं आएगा। और फिर रमज़ान शहरुद दुआ है, दुआ का महीना। ज़ादुल खैर का डे 3 रमज़ान और दुआ, दुआएं मांगने का महीना है। रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है, होंठों पे पिपड़ियां हैं, पेट में भूख है, और बंदा रब के सामने हाथ खड़े करके कहता है इन्नी लिमान ज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, अल्लाह मैं तो तुझसे हर नेमत मांगना चाहता हूँ, मुझे तो जो तू दे मुझे उसकी ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान सब चाहिए। तो रमज़ान और दुआ बड़ी गहरी दोस्ती है इन दोनों की, दुआएं बहुत सारी मांगेंगे इंशाल्लाह। फिर रमज़ान शहरो ज़िक्र है, ज़िक्र का महीना। और याद रखिए ज़िक्र की बेहतरीन फॉर्म अकीमिस सलात लिज़िक्री, नमाज कायम कीजिए मेरी याद के लिए। अल्लाह को याद करने का बेहतरीन तरीका नमाज और क़ुरान तो ख़ुद भी ज़िक्र है, इस चीज़ की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखना है, दिल को अल्लाह की याद के ज़िक्र से तर रखना है, और हाथों को अमल अल्लाह की पसंद के करके अल्लाह की याद का महीना बनाना। फिर इसी तरह रमज़ान शहरुल मवासात है, बाहमी हमदर्दी का महीना। एक दूसरे का दुख दर्द महसूस करना। देखिए मोमिन लिया दिया नहीं रहता, मोमिन पत्थर दिल नहीं होता, सख्त दिल नहीं होता, वो तो दूसरे का दुख सुख महसूस करता है। तो इसमें हमने गरीबों का भी दर्द महसूस करना है, भूखों का भी, घर के मुलाजमों का काम भी कम करना है, और इसी तरह से हमने उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के कुछ ना कुछ उन तक पहुंचाना है कि जो आजकल भी लॉकडाउन की वजह से डे टू डे वेजिस की बुनियाद पर कमाने वाले पता नहीं किधर भूखे हैं। कल एक चीज़ ने मेरा दिल तड़पा दिया। हमारी अपनी ही एडमिन है और जोहराबाद में माशाल्लाह जो स्कूल बन रहा है और जो काम चल रहा है उसी को देखने वालों में भी हैं, कहने लगी कल मैं अपनी किसी ज़रूरत के लिए एक ग्रोसरी स्टोर पे गई तो वहाँ एक बूढ़ा बाबा था, काफ़ी हिचकिचाता हुआ काउंटर पे आया, सिर्फ एक छोटा सा पैकेट मिर्चों का लेकर खड़ा है। उसकी शक्ल, उसकी वो कैफियत और उसकी बास्केट, उसकी टिल में क्या गया, वो बता रहा है कि उसके पास सिर्फ इतने पैसे थे कि जिससे वो हमारी तरह लंबी लिस्ट और ग्रोसरी के बड़े बड़े बैग्स और बड़ी बड़ी ट्रॉलियां नहीं खरीद सका। मिर्चें खरीदी हैं, घर जाएगा, शायद उसकी बीवी नमक पहले से होगा, उसमें कोई पानी लस्सी डालकर उससे बच्चों को रोटी देगी। फिर आगे क्या, वो एक अलग बात है। ऐसे लोगों को ढूंढिए, इनको पाइए। वसात का महीना, अपने अपने 10-10 हमसायों रिश्तेदारों की खबरगिरी कीजिए। फिर इसी तरह रमज़ान शहरु सदका है, सदका व खैरात का महीना। जब वाद बनिए, जेनरस बनिए, जितना अल्लाह से लेना चाहते हैं ना उतना देना शुरू कर दें। आप देखेंगे सदका सिर्फ माल का ही नहीं होता, सदका इल्म का भी है, कुरान का भी है। इमाम बुखारी गालिबन ये बात कहते हैं कि अल्लाह के नबी जो तेज़ हवाओं की तरह रमज़ान में सदका करते थे वो कुरान का सदका था। जिसके पास जो है, इसकी सिंपल सी मिसाल लीजिए, ना बहसों में पड़िए ना गहराई में जाइए। आपके पास माल है, माल का सदका दीजिए, माल बांटिए। खाना है तो खाना पका के दे दीजिए, इल्म है तो इल्म को बांट दीजिए, कोई स्किल है तो उसको लगा दीजिए। आप क्यों सो रहे हैं, अपनी स्किल्स को लोगों के नफ़े के लिए आम कर दीजिए। एक खातून की बात मैं सुन रही थी, कहने लगी कि इर्द गिर्द बहुत गुर्बत है, मेरे पास कुछ और तो था नहीं, घर में दाल रखी भी थी, थोड़ा सा दाल साग बनाकर बॉक्सेस बना दिए हैं कि ये चंद लोगों तक पहुंचा दूंगी। तो आपको अल्लाह नहीं पूछेगा कि आपने करोड़ों लाखों क्यों नहीं दिया। देखिए जो हम देते हैं ना, अल्लाह वो नहीं देखता, अल्लाह ये देखता है कितने में से दिए, परसेंटेज क्या। आपके पास 1,000 था, आपने उसमें से 200 दे दिया, आप कहते हैं बहुत थोड़ा दिया, 200 रुपये में क्या होता है। $1,000 में $200 भी दिए तो क्या दिए, लेकिन आपने 200 दिए 1,000 में से। दूसरे ने 20,000 दिए लेकिन उसके पास 20 लाख है, तो आपने ज्यादा दिया। किसी पे नजरें ना उठाएं, अपने आप को देख कितने में से कितना, यानी परसेंटेज निकालिए। फिर अगली चीज़ यह कि रमज़ान शहरुल क़याम है, क़याम का महीना है। क़ूमु लिल्लाहि क़ानितीन, रातों का क़याम, जिसको हम तरावीह भी कहते हैं, जिसको क़यामुल लैल भी कहते हैं, असल में आम दिनों की तहज्जुद का ही दूसरा नाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा जो तहज्जुद के नाम पे रात के आखिरी पहर में नफिल पढ़ते थे वही शुरू में आ गए। सारी रात में दो दो करके पढ़ते जाइए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपने क्याम करते वक्त ये सोचना है कि कूमु लिल्लाहि कानितीन, क्यामत के दिन अपने रब के सामने खड़ा होना याद आ जाए कि यौम यकूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन। और रमज़ान कसरत से इबादतों का महीना है। देखिए मोमिन की इबादत तो सारा साल है, हम मुकल्लफ नहीं है कि सिर्फ रमज़ान आएगा तो इबादत होगी, मोमिन की तो पूरी ज़िंदगी इबादत है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। और इबादत रिचुअल से बढ़कर एक कैफियत का नाम है, बंदगी का नाम है कि अल्लाह मैं तेरी बंदी तू मेरा रब। लेकिन ज़ाहिरा किसके रिचुअल्स हैं जिसमें नमाज भी है, रोज़ा भी है, सियाम और क़याम और एतिकाफ़ और तरावी और तहज्जुद भी है, ये सारी चीज़ें रमज़ान के साथ हैं। तो आपने मैंने गफलत में नहीं आना, इबादत करनी है, दिल की भी बातें करनी है, जुबान की भी बातें करनी है, जिस्म की बातें करनी है। और इबादत की चार मारूफ किस्मों को सामने रख के हर एक में आना है, माली इबादत भी करनी है, जिस्मानी इबादत भी करनी है। किसी चीज़ में सिर्फ माल लगता है, किसी में जिस्म लगता है, हमने तो अपनी इज्जतों के सदके भी देने हैं। किस सोच में कि लोग बुरा कहते हैं, हमने कहना जो कोई बात नहीं, इन्नी साइम, मैं रोज़े से, इन्नी साइमा, मैं रोज़ेदार हूँ। तो आपने इंशाल्लाह इस पूरे महीने में इबादत की कैफियत में रहना है। मुझे जुमला याद आ गया जो अभी 2-3 दिन पहले ज़ादुल खैर में ही निकला था मुझसे, कि नमाज सारे दिन की जमा कीजिए तो 1 घंटा तकरीबन, वो भी कोई अच्छी पढ़ ले तो, लेकिन रोज़े में आप पूरा वक्त रोज़े के दौरान इबादत में। तो देखिए कि इस दफ़ा आपकी इबादत 18 घंटे की है, 19 की है, 20 की है। हम अमूमन पसंद करते हैं रोज़ा जल्दी खुले, छोटे रोज़े, ऐसे ही है ना। और नॉर्वे में गर्मियों में रोज़े जब आते हैं कभी कभी 18 से 20 घंटे का भी रोज़ा हो जाता है। तो आप उसकी इबादत की कैफियत में रहेंगे, अल्लाह ताला आपको सब्र देगा। फिर इसी तरह देखिए कि रमज़ान लैलतुल कद्र का महीना है, और वो रात क्या है, خیر من الف شهر، ہزار دنوں سے نہیں، ہزار گھنٹوں سے نہیں، الف شهر، مہینوں سے بہتر. اور پھر اس میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے. لالچ آتا ہے نا ہمیں، کسی کو دیکھیں تو 10 ڈبے پکڑے ہوئے ہیں، اتنی کیوں لے آئے، سیل لگی ہوئی تھی. اچھا 10 والا 3 کا تھا. او اچھا، تو کہہ لیجئے کہ رمضان میں نیکیوں کی سیل لگ جاتی ہے. اور نہ سمجھ ہوگا جو سیل کی چیز چھوڑ کر مہنگی چیز خریدے. اور شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو کیا سیکھا آپ نے میں نے، کہ رمضان کا مہینہ اس جیسا کوئی مہینہ نہیں. چند احادیث شیئر کروں گی آپ سب کے ساتھ، اپنے اور آپ سب کے ایمان میں اضافے کی خاطر. صحیح بخاری کی روایت ہے 1898، 1898. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہم تک پہنچی کہ آپ نے فرمایا، اذا جا رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. When Ramadan begins, the gates of paradise are opened. دروازے کس کے لیے کھلتے ہیں؟ جس کو ویلکم کرنا ہو، جس کو کھڑا نہ ہونا پڑے. ڈس ریسپیکٹو لگتا ہے کہ آپ انوائٹڈ گیسٹ ہیں اور دروازے پہ بیلوں پہ بیلیں کر رہے ہیں اور مہمان کھڑا ہے اور دروازہ ہی نہیں کھل رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے والے جنہوں نے اتنی محنتیں کی، جنہوں نے اپنا وقت، جان، مال، اسکل سب لگا دی، اور خاص طور پہ رمضان میں ایسے رب کو راضی کیا جیسے بچہ اپنی ماں کو راضی کرتا ہے، تو فرشتوں ان کے آنے سے پہلے دروازے کھول دو. اور جنت کے دروازے کھلنے سے ایک یہ بھی معنی ہے کہ نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ تو آپ سبھی گواہ نا، عام دنوں میں روزے کا تصور بھی کر کے کچھ لوگوں کو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ رمضان میں پتہ ہی نہیں چلتا، نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی ہیں. تو جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں، آپ داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. پھر ایک اور روایت صحیح بخاری کی 1899، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے راوی ہیں. اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے. ذرا دیکھیے کتنے خوش قسمت ہیں ہم، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک زندہ رکھے اور اس کے بعد بھی. ہونے کے حوالے آپ کے میرے ساتھ، نیکیوں کے مواقع آسان کیے جا رہے ہیں اور گناہوں کے مواقع مشکل کیے جا رہے ہیں. پیچھے بھی دیکھ لیا اور اب اس حدیث میں تو تقابل کے ساتھ آ گیا کہ جب جنت کے دروازے کھلے تو جہنم کے بند. یعنی نیکیاں کرنا آسان، گناہ کرنا مشکل. اور حقیقت ہے بہت سے بہت عادی گناہ گار کو بھی رمضان میں گناہ کرنا مشکل لگتا ہے، گلٹ زیادہ آتا ہے. یہ کیا ہو گیا، لوگ کیا کہیں گے، ہائے رمضان میں یہ کر رہا ہے، روزہ رکھ کے یہ کر رہا ہے، روزہ رکھ کے یہ دیکھ رہا ہے. فطری سی بات ہے، انسان گناہ کرتے ہوئے جھجکتا ہے، پھر بھی کوئی کر رہا ہے تو بڑی بدنصیبی ہے. آپ نفرت نہیں کریں گے اس سے، بس دعا کریں گے کہ اللہ اس کا دل بدل دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کسی کو رمضان میں شراب پیتے دیکھا تو کوڑے لگوائے، کہا کہ تو رمضان میں شراب پی رہا ہے، ہمارے تو بچے بھی روزے سے ہیں. اور یہ جو سلسلت الشیاطین ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے انہ لکم عدو مبین کا جواب. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کھلا دشمن کہا ہے آدم اور اس کی نسل کا. بالکل اسی طرح جب دشمن کھلا پھرتا ہے تو خطرے زیادہ ہوتے ہیں نا، تو اللہ دشمن کو بھی باندھ دیتا ہے کہ بے خطر کودو پڑو. آپ دیکھیں رات کی اندھیروں میں بھی اٹھ اٹھ کے عبادت کریں تو ڈر نہیں ہوتا. تو شیاطین کا بند ہونا ایک قسم کا استعارہ بھی ہے اس چیز کا کہ تمہیں دشمن سے اللہ نے بچا لیا. ضرورت اس بات کی کہ آپ اور میں اس چیز پہ اپنے آپ کو جما لیں کہ وہ شیطان تو بند ہے، پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں. ایک سوال کا جواب دے کے آگے لے چلتی ہوں کہ جب شیاطین تو بند ہے تو پھر بھی کچھ کام غلط کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بڑا شیطان تو بند ہے، لیکن یہ نفس کا شیطان جو اس کے ساتھ رہ رہ کے بگڑ چکا ہے یہ گناہ کراتا ہے. ہمارا اپنا نفس ہے، وہ بھی ہمیں غلط چیزوں پہ ڈالتا ہے. 13ویں پارے کی پہلی آیت میں انشاءاللہ سمجھیں گے جا کے، وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بے گناہ قرار نہیں دیتا، کیونکہ نفس تو انسان کو ہمیشہ ہی برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے شیطان کے قید ہونے کو اپنے لیے اس بات کا سمبل بنانا ہے کہ اگر آپ رمضان میں کوئی گناہ کیا تو پھر اس کی ذمہ داری شیطان پہ نہیں آئے گی۔ چلیے، ہم نے رمضان کی بات کر لی، تھوڑی سی قرآن کی بات کر لی، فضیلتیں، اب تھوڑی سی روزے کی بات کرتے ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ روزے کی فضیلت، ایک تو تھا نا رمضان، وہ دیکھ لیا، اب روزہ، یعنی ایک ہے لفظ رمضان اور ایک ہے صوم۔ تو جلدی سے دہرا لیتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ملتا ہے اور اس فائدے کو لینے کے لیے آپ نے میں نے کیا کرنا ہے۔ نمبر ایک، روزہ فرض عبادت ہے، obligatory، کتبا علیکم۔ اور جب کسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرض کر دیں تو آپ اور میں اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نیکسٹ تھنگ کیا ہے کہ روزہ ارکان اسلام کا اہم رکن ہے۔ رکن کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کو گرا دیں یا چھوڑ دیں یا نکال دیں تو چیز گر جاتی ہے۔ مثلا آپ سب کے سامنے لیپ ٹاپس ہیں تو کسی میز پہ ہی ہوں گے نا، اس کی ایک ٹانگ نکال دیجئے تو یہ سٹیبل نہیں رہے گا۔ تو دین اسلام سٹیبل نہیں رہتا اس شخص کے لیے جو روزے نہ رکھے یا اس کا انکار کرے۔ پھر اگلی بات یہ کہ روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ چاہتے ہیں جنت میں جانا، بھاگ دوڑ کس لیے؟ اور جنت میں کیوں داخل ہونا ہے؟ کہ وہاں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ تو روزے جنت میں داخلے میں مددگار ہیں۔ پھر اگلی فضیلت دیکھیے گا کہ روزے دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ یہ کیوں ہے؟ پروٹوکول، عزت۔ جنت میں جانے والے دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص کثرت سے روزے رکھ کے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دروازے سے گزارا۔ دیکھیے، کسی بھی دروازے سے کوئی داخل ہو جائے، لیکن بڑے لوگوں کے لیے خاص دروازے ہوتے ہیں، وی آئی پیز اونلی، سٹاف اونلی، پروٹوکول ہے۔ دلہن کو گزارنے کے لیے ایک پھولوں کا دروازہ بنا دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ویلکم کہتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ اور خاص طور پہ جو پھر نفل روزے رکھے فرض کے ساتھ، تو پھر اس کے لیے تو یہ بات خاص ہی ہوگی۔ پھر روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ کہیں آگ لگی ہو تو کیا کرتے ہیں آپ؟ پہلے تو خود بچتے ہیں، بچانے کی کوشش کرتے ہیں، فائر بریگیڈ کو کوئی کال کر دیتا ہے، پانی ڈال دیتے ہیں، ریت ڈال دیں گے اس پہ، کپڑا ڈال دیں گے۔ بس روزہ بھی ایک ڈھال ہے اور مجھے اور آپ کو آگ سے دور کرے گا انشاءاللہ، شرط ایک ہے کہ روزے میں سوراخ نہ ہو، چھید والی ٹوکری نہ ہو روزہ، کیونکہ ان سوراخوں سے پھر آگ آئے نہ آئے اس کا دھواں ضرور آئے گا۔ تو انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے تو مکمل رکھنا ہے، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ اور ہر چیز کا روزہ۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ تھنگ کیا ہے کہ روزے کا اجر بے حساب ہے۔ ہر عمل کرنے پہ اللہ نے دنیا میں خوشخبری دے دی، اس کا ایک، اس کے ساتھ، اس کے 70۔ اور روزے کے لیے کیا فرمایا؟ حدیث ہم سن چکے ہیں، الصوم لی وانا اجزو بھی، وانا اجزا بھی یا اجزو بھی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ تو جب اللہ دیں گے تو کتنا دیں گے؟ پھر نیکسٹ دیکھیے کہ روزے کی جزا اللہ خود دیں گے، اور خود دینے والا کم نہیں کرتا۔ بندہ لے نا تو شرمندگی کے ساتھ سے تھوڑا لیتا ہے، مروت ہوتی ہے، زیادہ نہ لے لوں، زیادہ نہ پکڑ لوں، لیکن اللہ تعالیٰ دیں گے تو پھر اللہ کے تو ہاتھ ہی بڑے کھلے ہیں۔ پھر روزے دار کے منہ کی بسان اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ دیر کچھ نہ کھائیں تو منہ میں سے بسانت آتی ہے، بیڈ سمیل آتی ہے، لوگوں کو نہیں اچھی لگے گی، اور اپنے آپ کو صاف رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو نہ آئے، لیکن اللہ کو وہ بڑی پسندیدہ۔ پھر اسی طرح قیامت کے دن روزہ سفارش کرے گا کہ اللہ، میں نے اس بندے کو سارا دن کھانے پینے سے روکا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور یہ وہ ہے جس کو آپ کہیں کہ شافی و مشفع، وہ سفارشی جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر اسی طرح رمضان میں صیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ دن میں صیام، رات میں قیام، کیا کمال کی شخصیت آتی ہے۔ تو صدیقین کون ہے؟ انسانیت میں جو مقام اب آپ میرے میں سے کوئی حاصل کر سکتا ہے وہ صدیقیت کا ہے میکسیمم، کیونکہ اس سے اوپر نبوت اور رسالت ہے جو ایک عام انسان اپنی کوشش سے نہیں لے سکتا، اور اب تو اس کی اجازت ہی نہیں۔ اور شہداء پھر اس سے نیچے کا درجہ، مطلب یہ کہ ہائی رینکڈ ہوگا، وی آئی پیز میں ہوگا، وزیروں اور مشیروں اور صدر اور بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ ہوگا، कोई भी सेंस ले लीजिए, बस ये सोच लीजिए कि क़यामत के दिन ऐसे बंदे की शान क्या होगी। फिर इसी तरह रोज़ा गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया है। हम सारा साल गुनाह करते हैं और रमज़ान में भी हो जाते हैं, अल्लाह ताला उसको साथ साथ माफ़ करेगा, क्योंकि बंदा रोज़ा रख के अल्लाह को ये बताता है कि मेरे मालिक अभी भी मैं तेरा हूँ, कोशिश पूरी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ होता है। वो किसी ने कहा कि जब वो उम्मत को बख्शने पे आता है तो तोहफे में रमज़ान देता है। और याद रखिए कि रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के हुक्म पे हर अमल करने का एक नाम है। और अल्लाह की शान है कि जब भी रमज़ान आता है दिल में ऐसे लगता है कि खुशी के लड्डू फूटते हैं, कि अल्लाह अब हम ज़रूर ही कोशिश करेंगे कि अपने गुनाहों को माफ़ कराएं। और इसके अलावा रोज़े के जिस्मानी, दीनी और रूहानी फ़ायदे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जिस्मानी फ़वाद क्या हैं कि जिस्म को कुछ वक्त रेस्ट मिल जाता है, रिलैक्स्ड हो जाता है जिस्म, और नतीजा क्या करता है कि इंसान अपने आप को हेल्दी फील करता है। ज़ाहिर लगता है कि रोज़ा मुश्किल है, और दूसरी बात ये है कि आप दीनी तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं। फितरी सी बात है, देखिए जब हमारे जिस्म में खाना आता है ना तो नींद आती है, रिलैक्सेशन, सोना चाहता है इंसान। जब बीच में ख़ास तौर पे 2, 3, 4 बजे का टाइम, तो वो वक्त बेहतरीन वक्त है कि आप कुरान सुन लीजिए, जिससे आप ताकत महसूस करते हैं। फिर इसी तरह रोज़े के रूहानी फ़ायदे क्या हैं, आप देखिए कि हमारी रूह की ग़ज़ा कुरान है, और रूह को खाना पानी नहीं चाहिए होता। हम सारा साल खाने पीने में इतने लग गए कि रूह के तकाजे भूल जाते हैं। ऐसे ही कि पहला बच्चा हुआ तो माँ उसको बहुत देखती है, अल्लाह दोबारा भी बच्चा जल्दी दे, तो जूं ही नया बेबी आता है तो पहला बच्चा थोड़ा सा आंखों से दूर होने लगता है, तो चिड़चिड़ा हो जाता है, फील करता है। जिस्म सारी तवज्जो एनर्जी ले जाता है हमारी, तो रूह पीछे कहीं पिचकी पड़ी होती है। रोज़े की हालत में रूह को ग़िज़ा मिलती है। फिर इसी तरह रोज़ा फितनों से बचाता है। आज के हमारे इस लेक्चर का आखिरी हिस्सा फितनों पे ही बात होगी, जो हमारे इस साल के दौरे कुरान का थीम है। इंशाल्लाह ताला वहाँ चल के आपको बताते हैं, हर साल डिफरेंट थीम के साथ दौरे कुरान करने में से इस साल जो हमारा थीम है वो क्या है, दौरे हाजिर के फितने और उनका हल, ट्रायल्स एंड सॉल्यूशन। अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इसमें बग़ैर किसी फितने के शामिल होने की और इसको पूरा करने की तौफीक दे। रोज़ा फितनों से कैसे बचाता है, इस पे एक हदीस सुन लीजिए। सही बुखारी की रिवायत है 1895, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से ये रिवायत हम तक पहुँची। इन्होंने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस याद है फितनों के बारे में, यानी क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फितनों के बारे में कुछ कहा है। कैसे प्यारे लोग थे, उनकी नज़रें इस पे लगी रहती थी हर वक्त कि अल्लाह के नबी के हवाले से डायरेक्ट नॉलेज लें। ज़रा सी बात करूँगी इल्म की, क्योंकि पैशन ही ये है कि कुरान सुन्नत को आम करना है। हमें भी आज अपने लिए यही दुआ करनी है कि अल्लाह हमारे लिए हर वक्त दीन पे अमल करना और इल्म को हासिल करना आसान कर दे। तो खैर, हज़रत हुज़ैफ़ा बोले कि मुझे याद है, मैंने अल्लाह के नबी से सुना है। अब आपकी ज़ुबान अथर के अल्फाज सुन लीजिए, जिसका तर्जमा है, आपने फरमाया था कि इंसान के लिए इसके बच्चे, यानी बाल बच्चे मुराद छोटे बड़े बच्चे, इसका माल और इसके पड़ोसी फितना है, यानी आजमाइश भी है और इम्तिहान भी है, और जिसका कफ़ारा नमाज, रोज़ा और सदका बन जाता है। रोज़ा फितनों से बचाता है, ये तो इंशाल्लाह हम हर दिन के फितने से देखेंगे। दौरे कुरान में हमारा हर दिन का डिफरेंट टॉपिक होगा, 30 पारों के 30 से कुछ ज़ायद फितने हैं जिनको इंशाल्लाह हम सुनेंगे, दौरे हाजिर के फितने। और एक एक चीज़ पे हमारा दिल गवाही देगा कि यही तो मेरा मसला था, यही तो मेरा प्रॉब्लम है, यही तो मैं कहती हूँ, क्योंकि हमने वो बातें नहीं करनी जो हम कुरान सुन्नत से कई दफ़ा सुन चुके। क़यामत की अलामतें, कुर्बे क़यामत की अलामतें वो तो हैं, लेकिन आज के फितने, घरों के फितने, नज़रों के फितने और बहुत सारे, तो लिहाजा रोज़ा रख के इंशाल्लाह बहुत सारे फितनों से बचना है। एक और रिवायत लीजिए, सही बुखारी 270, 270, और सही मुस्लिम 259, जिल्द 1 है दोनों की। आपने फरमाया, मन साम रमदान ईमान व एहतसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बिही ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے بحالت ایمان اور ثواب کی امید پہ با امید ثواب، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص ماہ رمضان میں کھڑا ہو، مراد کیا کہ نوافل پڑھے، تراوی یا تہجد جو بھی نام لے لیں، یہ پڑھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید پہ، تو اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ذرا سے رکیے، خود کو کہیے، کیا میں چاہتی ہوں کہ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں؟ دیکھیے نا، کپڑے پہ داغ پڑ گیا، آپ ایسے ہی جانے دیں گے؟ کسی کو داغ لگے ہوئے کپڑے اچھے لگتے ہیں؟ اسٹینٹ انک گر گئی، کھانا گر گیا، پوری کوشش ہوتی ہے پہلی فرصت میں اس کو بدلوں، تب آپ کے میرے لیے کیا ہو رہا ہے؟ گناہوں کے داغ مٹانے کا موقع آ رہا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید رکھیں گے اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کہ پہلے تو ہم اپنے ایمان کو دیکھ لیں، اس کی کمی بیشیوں کو اللہ دور کر دے، عقیدے کا زوف نہ ہو، اور دوسری بات ہے کہ جو بھی نیکی کرنی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے بدلے میں کچھ، تو اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ. اور ہم رمضان کے بعد ایک اجلے کپڑے، سفید دھلے ہوئے کپڑے کی طرح ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق بھی دے. بہت بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان سے گزر بھی جائیں اور پاک نہ ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت اور صحیح روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ منبر پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کی بجائے آمین آمین اور آمین فرما رہے ہیں. بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا، کیونکہ ان کی عادت تھی پوچھنے کی، وہ ایسے ہی نہیں اپنے خیال سے یا گمان سے کوئی کام کرتے، تو جب انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آج آپ نے آمین کیوں کہا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اس میں اتنی نیکیاں نہ کرے کہ اللہ اس کو بخش دے، تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. آپ بھی آمین کہہ دیں، یعنی دعا جبریل کرتے ہیں یا پیغام دیتے ہیں، اور آمین ایک رسول اور نبی کی زبان سے. اور پھر اسی طرح بڑھاپے میں ماں باپ کو پائے، دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو، اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کرے، تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے. امیجن تو کیجئے کہ آپ اور میں پچھلی زندگی کے جتنے رمضان گزار چکے، اس کے بعد ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا اللہ ماشاءاللہ. تو نیکسٹ پہ چلیے، رمضان کے مقاصد، آبجیکٹیوز آف فاسٹنگ. جب مقصد معلوم ہونا تو کام آسان ہوتا ہے. گول اورینٹیشن، جو ہمارے گولز ہوتے ہیں نا، وہی ہمارے رولز ہوتے ہیں. تو 10 گولز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جسٹ ریویژن کے طور پہ. پہلی چیز تو ہم نے دیکھ لی، لعلکم تتقون، تقوی کا حصول، اٹیننگ تقوی. دوسرا مقصد ہے روزے کا، اور ہونا بھی چاہیے، اور یہ آپ کی میری چیک لسٹ ہے کہ کیا میں ان مقاصد کے لیے روزے رکھتی ہوں یا صرف ڈائٹنگ کے لیے یا صرف عادت پہ. نہیں، روزے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، پلیئر آف اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ پلیزڈ ہو جاتے ہیں اس بندے سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ روزے دار کو روزہ رکھتا دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہوں گے. اگر کوئی ماں بیٹھی سن رہی ہے تو وہ اپنے دل سے پوچھ لے، بچہ روزہ رکھا ہو تو ماں کو وہ کیا لگتا ہے؟ دل کرتا ہے کہ کیا اس کے لیے بنا دے، اور اپنے روزہ کھولنے کی کوئی فکر نہیں. کھجور کسی دوسرے نے منہ میں ڈال دی، وہ بچے کے منہ میں کھانا ڈالتی ہے، تو اللہ کو کتنا پیار آئے گا. اس دفعہ آپ نے روزہ رکھنے کے دوران جب بھی کبھی آئینہ دیکھیں، بہت نہ دیکھیں لیکن جب بھی دیکھیں، تو اس وقت سوال کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے خوش ہیں، آپ کو میرے اوپر پیار آ رہا ہے؟ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے دل سے آواز آئے گی، جیسا آپ کا روزہ ہوگا، جو نیت ہوگی اللہ کے حکم سے، ویسی ہی فیلنگ آئیں گی. پھر ایک اور چیز روزے کے ناطے سے کیا کہ روزہ ٹریننگ ہے کہ انسان اللہ کے حکموں کو مانے. اللہ کے حکموں کو ماننے کے لیے روزے رکھوائے جا رہے ہیں. دیکھیں نا، کھانا ہاتھ میں، ابھی کھا نہیں پا رہے کیونکہ ابھی اذان کا وقت نہیں ہوا، اور ادھر ذرا دیر سے آنکھ کھلی، کھانا پورا تیار کیا ہی ہے ابھی، تو وقت ختم ہو گیا، نہیں کھا رہے. کیا ہے یہ؟ ٹریننگ ہے. ہینڈز اپ کہتے ہیں نا، کھڑے ہو جاؤ، چھوڑ دو، لیو اٹ، ٹیک اٹ. اس سے پیاری ٹریننگ کیا ہوگی؟ یہ تو الگ بات ہے کہ شعور کے بغیر جب عبادات کی جاتی ہے نا، تو پھر انسان عبادات کو بھی عادات بنا دیتا. پھر اگلی بات، معاملات اور عبادات کو درست کرنا. ये बहुत जरूरी है। आप देखिए कि जितना तकवा अंदर आएगा ना, उतना आपकी इबादात में भी रंग आएगा और आपके मामलात भी खूबसूरत होंगे। नमाज पढ़ी नहीं जा सकती जब तक के तकवा ना हो, और खानदान चलाए नहीं जा सकते जब तक तकवा ना हो। जिंदगी में एक असूल बनाइए, अल्लाह ताला को अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर रखिए, प्रायोरिटी अल्लाह की ज़ात, उसके बंदे उसकी मखलूक। आप और मैं सब अल्लाह की मखलूक हैं, उसकी मलकियत में हैं। आप जब किसी भी इंसान को अल्लाह की मलकियत में महसूस करेंगे ना, तो आपका उसके साथ ताल्लुक बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। मामलात और इबादत कब दुरुस्त होते हैं? जब हम रोज़ा रखने के बाद ये सीखते हैं कि मैंने बंदों के साथ जो मामला करना है ना, वो उनको अल्लाह का बंदा समझ के करना है। ये जेम लिखिए, बंदों को अल्लाह का बंदा समझिए। जितना आप इंसानों को अल्लाह का बंदा समझेंगे ना, आपको उनके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, आप उनके गुस्सा दिलाने पे गुस्से में नहीं आएंगे, क्योंकि वो भी अल्लाह के, मैं भी अल्लाह की। क्योंकि देखिए, हर इंसान मुख्तलिफ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाथ थाम ले तो हाथ छोड़ने को दिल ना करे, और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको सिर्फ बर्दाश्त करना पड़ता है, बात करने को दिल नहीं करता किसी इंसान से, लेकिन आप करेंगे। कुछ से प्यार किया जाता है, कुछ को बर्दाश्त किया जाता है। रमजान में भी तो देखिए ना, अल्लाह ताला आपको मुझे यही तो सिखा रहा है, नहीं दिल कर रहा तो खाओ, और दिल कर रहा खाना नहीं है, इजाजत नहीं है, तो बंदों के साथ मामला सिखाता है रोजा। इंसानों से नहीं, उनकी गलतियों से नफरत करनी है। और जब आप किसी बंदे को अल्लाह का बंदा समझेंगे ना, तो फिर आप उसके ऊपर हुक्म नहीं चलाएंगे, आप उसको बदलना नहीं चाहेंगे, आप उसके ऊपर रोक नहीं डालेंगे, आप उसके साथ बस चल चलाओ वाला मामला करेंगे। तो रोज़ा क्या सिखाता है कि किससे मोहब्बत भी करनी है, और उसका एहतराम भी करना है, रिस्पेक्ट भी देनी है, लव भी करना है, और किसको जस्ट टॉलरेट करना है, किसको बर्दाश्त करना है। और ये कहकर खुद को यकीन दिला लिया करें, अल्लाह का बंदा है ना, अब मैं इसे क्या उलझूँ। लेकिन ना, अपने बच्चे से और गैर के बच्चे से एक ही मामला तो नहीं होता ना। अपने बच्चे को मैं मार भी लेती हैं अपने मुल्कों में जब होती हैं, तो दूसरे के बच्चे को डांट भी नहीं सकती। तो तकवा सिर्फ इबादात में नहीं, मामलात में भी आता है, और इंसान फिर एक से एक आगे जाता है। और याद रखिए कि बाहर वालों से 100 मरतबा मुस्कुरा कर मिलना आसान है, घर वालों से एक बार मिलने की निस्बत। करीब रहने वालों से इंसान बहुत जल्दी चिढ़ने लगता है, ऑफेंड। आजकल घरों में लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं, मुझे कई तरफ से पैगाम आता है। वजह क्या है कि मर्द सारा वक्त घर में, ख्वातीन भी हैं, और चपकलश चलती है। तकवा होगा ना तो इंशाल्लाह घर के हालात बड़े खूबसूरत होंगे। और एक वीक पॉइंट बता दूं जो हमारा है इस प्लेटफॉर्म से, आप जब भी कुछ सुनेंगे और स्पेशली मुझसे, कि हम घर की बहुत बात करते हैं, फैमिली टाइज, बच्चों की तरबियत, शौहर बीवी का मामला, यही तो मेरे आपके करने के काम है। हम में से कोई हुकूमत में थोड़ी है जाके जो वहाँ कानून पास कराए। तो इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें तकवा के साथ अपने मामलात और इबादात को दुरुस्त करने वाला बनाए। और रिश्तेदारों से अभी भी बात कीजिए कि कोई दिलों में रंजिश, गिले, शिकवे हैं तो अल्लाह ताला उनके दिल धो दे। फिर इसी तरह से इन चीज़ों को छोड़ दे जिनके छोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। बस अल्क़िहा व फ़ख़ुज़हा, सूरह ताहा में पढ़ेंगे, मूसा की सुन्नत है। मूसा अपनी लाठी के फ़वाद बयान कर रहे हैं, और अल्लाह कहते हैं फेंक दो इसको, अल्क़िहा। और जब नीचे गिरने के बाद वो सांप बनी तो कहा खुज़हा, बस ये सिखाएगा रोज़ा आपको, अब खा लो, अब नहीं खाना। फिर इसी तरह से सिर्फ भूख और प्यास से नहीं, बल्कि नाजायज़ चीज़ों और गुनाहों से हमेशा का रोज़ा रखना। 1 महीने की ट्रेनिंग अगले 11 महीने में हमारे ऊपर असरअंदाज होती है। आप मुसहफ में देखिए, रोज़े के तस्करे के फौरन बाद माले हराम का तस्करा, यानी इस 1 महीने में हराम से नहीं, हलाल से रोज़ा रखो, जो चीज़ें जायज़ थी वो भी ना खाओ, तो अगले 11 महीनों में हराम से रुकोगे। फिर इसी तरह परहेजगाराना ज़िंदगी गुजारना, पाकीज़गी की ज़िंदगी, नज़रें भी पाक, कान भी पाक, आंखें भी पाक, दिल दिमाग भी पाक। ना देखना है गलत को, ना सुनना है गलत को, ना पढ़ना है, और इससे आगे तो और सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर इसी तरह रोज़े के मकासद में एक है कि अपने अखलाक को संवारे, गुड मैनर्स, आपके अंदर ये ना मामला आ जाए कि रोजा रख के सबसे लड़ते ही रहे, पीछे हो जाओ मुझे गुस्सा आ रहा है, घर वाले भी कहें नहीं बाप को नहीं छेड़ना ये रोजे से, अम्मी इस वक्त चूंकि रोजे से इसलिए बड़े गुस्से में, नहीं रोजे के साथ स्माइल, अखलाक, नौकरों से अच्छे, घर वालों से अच्छे, और फिर सबसे बढ़ के नफ्स को काबू में रखें, कंट्रोल करें नफ्स पे, और सब्र और बर्दाश्त करना। आप देखिए इतने बड़े बड़े गोल्स लेकर जब आप रोज़ा रखेंगे तो आप इमेजिन तो कीजिए कि आप खूबसूरत कितने हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तक आपका दिल बहुत खुश हो चुका है कि हम एक बहुत ही खूबसूरत महीने में दाखिल होने वाले हैं और हम इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो आइए ज़रा थोड़ी सी रमज़ान की तैयारी करते हैं, प्रेपरेशन फॉर रमज़ान, क्योंकि तैयारी के साथ किए हुए काम में और बग़ैर तैयारी के साथ किए हुए काम में बहुत फ़र्क होता है। प्रेपरेशन जिस्मानी ही नहीं जहनी भी होती है, मेंटली प्रिपेयर भी होना होता है और फिज़िकली भी। तो चंद चीज़ें सबके फ़ायदे की खातिर दोहराते हैं जो हमने ज़ादुल ख़ैर में डिफरेंट टॉपिक्स के अंडर की हैं, लेकिन आ चुके वेलकम रमदान है तो हम सिर्फ़ इस एक सेशन में सारी चीज़ों को सम अप कर लेते हैं। तो रमज़ान की तैयारी कैसे, इसमें भी इंशाल्लाह 10 चीज़ें आपसे क्विकली शेयर करती हूँ। नंबर एक, दिल की सफाई, प्योरिटी ऑफ द हार्ट, दिल साफ कीजिए। चलिए यहाँ बैठे बैठे सोचिए और ख़ुद से पूछिए, मैं किससे नाराज़ हूँ, मेरा दिल किससे गंदा है, किससे मैं बदगुमान हूँ, किससे बात करने को दिल नहीं करता, किससे बात किए हुए 3 महीने से ज़ायद गुजर गया। चलिए क्या करें, देखिए दिल वो बर्तन है जिसमें तकवे ने सिमटना है, ख़ास तौर पे रमज़ान में। अब बर्तन गंदा है, समझिएगा मिसाल से, जमजम गंदे ग्लास में डालें, वो तो जमजम है, पीने को दिल नहीं करेगा, तो बस दिल साफ कीजिए। यहाँ बैठे बैठे अभी से इरादा करें, मैंने सबको माफ़ किया। एक बहुत नई खातून थी तो उनकी आदत थी कि जब रात को बिस्तर पे लेटती दुआएं वगैरह पढ़ने के लिए, बल्कि अभी बैठी ही होती तो कहती, भाई मैंने सबको माफ़ किया, मुझे भी माफ़ करना, पता नहीं सुबह उठना है कि नहीं। तो आप और मैं अपने लिए इस दफ़ा ये कोड वर्ड बना लेते हैं, रात को बिस्तर पे लेटते वक्त अल्लाह के सामने इकरार कीजिए कि अल्लाह मैंने सबको माफ़ किया। देखिए ये कभी हो नहीं सकता कि हमारे दिल गंदे ना हो, कपड़े पहने और मैल ना आए, पसीना ना आए, ये नहीं हो सकता। करना क्या, वही करते हैं जो रोज़ करते हैं, टेक अ शावर और हैव क्लीन क्लॉथ्स, बस साथ साथ साफ करते जाएं। पाँव पे मिट्टी पड़ती है ना चलते चलते, थोड़ा सा आगे जाएं तो उतर जाती है, ये करना है। तो गंदे दिल के साथ नहीं। किसी ने एक उस्ताद से पूछा कि हमारे असलाफ रमज़ान के इस्तकबाल कैसे करते थे, तो उन्होंने कहा इस हाल में कि उनके दिल में किसी एक के लिए किसी किस्म की गलत फीलिंग नहीं होती थी, साफ दिल से। तो घर साफ करेंगे ना इंशाल्लाह भी, तो दिल भी साफ करना है, क्योंकि इसमें अब अपने कुरान का पानी डालना है इंशाल्लाह, बोलिए। और गंदे दिल के साथ बंदा जमता भी नहीं है, ये एक खामोश किस्म की खबर होती है कि दिल चूंकि गंदा है इसलिए कुरान में दिल नहीं लग रहा। फिर अगली चीज़ पर चलिए, अच्छे इरादे कीजिए और सुन्नतों पे अमल की ख्वाहिश रखिए। इसके लिए प्लानर्स शेयर किए गए हैं पहले भी, पिछले सालों में बहुत कुछ है, रमज़ान का दिन कैसे गुजरें, क्या करें, गोल करें, लेकिन इस साल के ज़ादुल ख़ैर में Day 4 पे शुरू का ही टॉपिक था रमज़ान और फैमिली, उसमें कुछ प्लान्स थे, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के साथ बैठकर घर में इरादे कीजिए और नियत कीजिए, अपने लिए कर लीजिए, चलिए अभी अपने ही लिए करें, कोई गोल सेट करें। मसलन मैं आपको सोचना सिखा देती हूँ ताकि आप तक बात पहुँच जाए। मसलन मैं आखिरी 10 सूरतें हिफ्ज़ करूँगी, मैं अपनी तजवीद ठीक करूँगी, दौरे कुरान पूरा करना, ये सब कुछ अपने लिए जो सोचना है, कोई अधूरे काम है उनको पूरा करें, फोकस्ड रहना है, टाइम ज़ाया नहीं करना, तो इरादे कीजिए। फिर इसी तरह से अपनी ज़िंदगी में सुन्नतों को लाइए। फिर अगली चीज़ क्या कि जहनी तैयारी और प्लानिंग, मेंटल प्रिपरेशंस एंड प्लानिंग्स कीजिए, क्योंकि जब तक आप पहले से तैयार नहीं होंगे रमज़ान आएगा और गुजर जाएगा और एंड पे सिर्फ आपको गिल्ट दे के जाएगा। अक्सर लोगों से सुना गया है कि रमज़ान के एंड पे गिल्ट में चले जाते हैं, हाय इस साल भी कुछ नहीं किया, तो इंशाल्लाह पहले से तैयार होंगे। फिर इसके बाद ये कि घर की सफाई भी कर लीजिए, एक्स्ट्रा चीज़ें हटा दीजिए, बेडशीट्स अच्छी तरह से धो धिला कर कोई ऐसी डाल दीजिए जो ज़्यादा दिन चलती हैं, कर्टन्स को आप छोड़ दीजिए ऐसे ही ठीक है, देखेंगे ईद के बाद। कारपेट की अच्छी सफाई कीजिए, वो बर्तन जो आम इस्तेमाल होंगे वो सामने सामने रखिए और एक्स्ट्रा उठा दीजिए, वो कपड़े जो आपका वक्त बहुत लेते हैं उनको समेट के कहीं कोनों में डाल दें, और दो तीन इजी गोइंग ड्रेसेस रखिए जो बस धोएं और पहन लें। फिर इसके बाद ये कि बच्चों को साथ लेकर प्लान करें, इंक्लूड किड्स इन प्लानिंग टू। ये क्यों? इसलिए कि आज एक बहुत ही खौफनाक चीज़ सामने आ रही है कि बच्चों की ख्वाहिशात तमन्नाएं चीज़ें और माँ बाप की और। इवन शादी में इकट्ठे नहीं जाते, घर में इकट्ठे नहीं बैठते, बच्चे अपने कमरों में घुसे रहते हैं, अब्बा खबरें सुनते रहते हैं, अम्मी खाने पकाती रहती हैं। ये नहीं करना, शामिल कीजिए। ये बाप सब अपनी समझ बूझ से करेंगे कि बच्चों को भी कुछ गोल्स देने हैं और बड़ों को, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नेक्स्ट थिंग पे चलिए, बेकार मशागिल ख़त्म कीजिए। बेकार चीज़ें क्या होती हैं? टाइम वेस्टर्स। एक लिस्ट तो बनाइए, व्हाट आर माई टाइम वेस्टर्स, गेट रिड ऑफ बैड हॉबीज़। ना दीन का फ़ायदा ना दुनिया का फ़ायदा, मसलन सिर्फ खबरें सुनना, सिर्फ अपडेट्स रहना। और अब कोरोना की बातें तो हिफ्स हो गई, तो अब लॉकडाउन किधर हुआ किधर नहीं हुआ, किसने किया क्या, किस मुल्क उधर कौन, और वहाँ के हुक्मरानों को बुरा कहना, फाड़ दीजिए इस सफ़े को। मुतमईन रहिए, यानी आप मेरे हाल पोस्ट वो आने लग गई जिसमें लोग कहते हैं कि आप सब सुनना छोड़ दीजिए, नहीं तो आप ज़हनी मरीज़ हो जाएंगे। फिर एक और चीज़ जो रमज़ान से पहले रोज़े की तैयारी में बहुत ज़रूरी है, कि आप देखिए ना कि रमज़ान में आप तकरीबन 12 से 14 15 16 घंटे इससे भी ज़ायद कुछ नहीं खाएंगे, तो स्टमक हर्ट होता है। तो इसका इलाज क्या है कि अभी स्नैकिंग छोड़ दें, क्विट स्नैकिंग। भूख लगी तो ये खा लिया, दिल चाहा तो चॉकलेट ले लिया, कोक पी ली, चिप्स खा लिए, निम्को खा ली। अब मैदे को आप एक बच्चे की तरह हर वक्त छोटे छोटे टिकी पैक्स पकड़ाते रहते हैं, तो पहले दिन बहुत चीखेगा मांगेगा, फिर सर दर्द होगी, फिर माइग्रेन होगा। तो अभी से ही लॉन्ग ब्रेक्स लीजिए, सुबह शाम का खाना शुरू कर दें। इस पे मुझे याद आ रहा है पिछले सालों का एक वेलकम रमज़ान का लेक्चर था, तो उसमें ये स्टेप 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 बताए थे कि किस तरीके से आप अभी से ही शाबान के आखिरी दिनों में ही अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज कीजिए, ताकि रोज़े वाले दिन कोई ख़ास फ़र्क ना लगे आपके जिस्म को, क्योंकि बॉडी को तो नहीं पता ना कि आज यकम रमज़ान आ गया। तो लिहाजा स्लो एंड स्टडी अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज कीजिए। फिर इसके बाद 24 घंटे की तकसीम करें, डिस्ट्रीब्यूट 24 आवर्स। इस पे बहुत खूबसूरत एक्टिविटीज़ बन सकती हैं, छोटी सी एक बताती हैं जो एक दफ़ा ऑन साइट स्कूल में भी बनी और कई साल तक फिर वो लगी भी रही। 24 पॉकेट्स, एक विंडो पे आप 24 खिड़कियां बना लें, खोलते जाएं और उसके अंदर कुछ लिखते जाएं। सुबह उठने से लेके मसलन 4 बजे आप रमज़ान में उठते हैं, तो रात सोने तक और बीच के जो घंटे हैं उस पे स्लीप लिख दीजिए, तो आप देखेंगे कि उसके मुताबिक आपको मौका मिलेगा। इस पे अगर किसी को एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए हो तो मज़ीद भी बताया जा सकता है, लेकिन आप अपने इंटेलेक्ट के मुताबिक 24 घंटों को बनाकर टाइम टेबल लिखिए, ये स्लीपिंग टाइम, ये फजर का टाइम, ये सहरी का टाइम, ये सोने का टाइम, ये इसका। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि उसको देख देख के फिर हमारा जहन भी उसी तरह काम करता है। फिर अगली बात है, इस साल नियत कीजिए कि टाइम वेस्ट नहीं करना, डोंट वेस्ट द टाइम। टाइम मैनेजमेंट जिसकी गलत है ना, रियली ये जुमला किसी ने सच कहा कि हु फेल्स टू प्लान ही प्लान्स टू फेल। जो प्लानिंग करने में फेल हो जाता है ना, वो इस चीज़ का प्लान बना रहा है असल में कि मैंने फेल होना है। और ज़िंदगी क्या है? वक्त वलस्रिन अलइंसान अलफी खुस, तो वक्त को ज़ाया नहीं कीजिए, अभी से निकाल दीजिए उन चीज़ों को। टाइम वेस्टर्स में बहुत सोचना और जस्ट लाइक इधर उधर सोशल मीडिया पे रहना, ये भी आता है। अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिए अपने स्क्रीन टाइम को, बेहतर कीजिए, लेकिन प्लान करेंगे। फिर उसके बाद अगली चीज़ है कि बुरी आदतें छोड़ने की नियत करें। मैं भी और आप भी कम अज़ कम अपनी 5 आदतें लिखते हैं, और देखिए आपकी, आपको पता है, मुझे मेरी पता है, उसमें से कोई 2-3 दूसरों को भी पता लग जाती हैं, पूरा नहीं छुपता बंदा कभी भी। तो आप चुपके चुपके एक एक आदत हर 6 रोज़ों के बाद एक पे काम कर लीजिए, तो आप देखेंगे 6 दिन बहुत होते हैं, बल्कि साइकाट्रिस्ट कहते हैं कि एक चीज़ की आदत डालने में 7 दिन दरकार होते हैं। तो चलिए अब 7 दिन के बाद एक कर लीजिए, हर हफ्ते की एक आदत छोड़ दीजिए। 4 आदतें अगर मेरी बुरी छूट गई इस रमज़ान में, तो अगले साल तो मेरी शख्सियत ही फ़र्क होगी। फिर इसी तरह नेकी के मौके तलाश करें, और याद रखिए नेकी के मौके दूर नहीं होते, करीब होते हैं, हाथ में होते हैं। आज से कल तक जितने लोगों को इस रमज़ान के सफ़र दौरे कुरान की जहनी तैयारी करवा सकें तो करवाइए, इन्फॉर्म कर चुके हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह, अब इनवाइट कीजिए। पर्सनल कॉल्स और साथ लेके चलिए। अच्छा मैं कल तुम्हें बुलाऊंगी, तुम्हें कल मैं लिंक दूंगी, मैं तुम्हें ऐड कराती हूँ, मैं तुम्हारा ईमेल डालती हूँ। इस तरह करें कि अगले बंदे को खुशी भी हो और जैसे कहते हैं कि उंगली पकड़ कर तैयार करें। फिर एक चीज़ और है कि रिश्तेदारों से ताल्लुकात उस्तवार करें। यहाँ बैठकर सोचिए किस किस को कब से नहीं मिली। अब तो चूंकि लॉकडाउन है तो जाने वाली तो बात ही रही, चाय समोसे भी नहीं खाने पड़ेंगे ना खिलाने पड़ेंगे, फोन्स पे ही दोस्तों को कॉल कर लें, घर वालों को कर लें। चूंकि ये फ्री कॉल्स हो गई हैं अब, और हर वक्त ही स्काइप ऑन है और व्हाट्सएप कॉल्स हैं, कदर नहीं रही। अपने शहर में रहने वालों को लोकल कॉल्स कीजिए, और दो दो मिनट की, कोई ज़रूरी नहीं कि आप आधा आधा घंटा बात करें। मौसम पूछना है तो आप जाके वेदर चैनल से ले लीजिए, सियासत में क्या हो रहा है तो मीडिया से ही आपको खबरें। रिश्तेदारों को कॉल करते पर्सनल बात किया करें। और फिर आखिरी बात करके आगे ले जाऊंगी, और वो क्या है कि दुआ कीजिए कि अल्लाह हम रमज़ान तक ज़िंदा रहें। रमज़ान तो आएगा पर ये नहीं पता कि हम होंगे कि नहीं। क्यों? इसलिए कि हमने तो बहुत सारे गुनाह रखे हुए हैं जो रमज़ान में ही माफ़ कराने थे। तो अल्लाह से दुआ करें, मैं भी और आप भी, कि अल्लाह हमें रमज़ान तक भी ज़िंदा रखना और उसके बाद भी ज़िंदा रखना। ये ना हो कि ईद के दिन ही हम चले जाएं आगे और सबकी ईद ख़राब होने लगे। बल्कि क्या करेंगे हम, अल्लाह से मांगेंगे कि अल्लाह अभी तो पता चल रहा है। सच्ची जो बात है, किताब आती है ना ज़िंदगी में तो बहुत कुछ पता चलता है। फिर पता चलता है जब अंदर की आँख खुलती है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान के बेहतरीन फ़वाद हासिल करने वाला बनाए। अगली चीज़ जो रमज़ान और रोज़े से मुतल्लिक हमारे पास है वो क्या है? रोज़ा किस किस चीज़ का? क्या सिर्फ रोज़ा खाना ना खाने का नाम है? और पराठे खाकर, दही के साथ रोज़ा रखकर, पकोड़े और समोसों से खोलने का नाम है? नहीं। तो पहली बात है कि रोज़ा आँख का। आँख का रोज़ा क्या होता है आप कहेंगे, ये कैसे होता है? बद नज़री और ताक झांक से बचना है। बद नज़री से मुराद यह है कि पहले तो वो खिड़कियों में खड़े होकर और बाज़ारों में बैठकर आती जाती लड़कियों को लोग देखते थे, और लड़कियां लड़कों को देखती होंगी। आज ये काम बहुत आसान हो गया, आपके हाथ में ये एक फिट से भी छोटी चीज़ है जो क़यामत के दिन बोल बोल कर गवाहियाँ देगी कि इस फ़ोन से, इस टैबलेट से ये क्या देखा करता था, ये किधर ताकता था। कोई एक विंडो खुलती थी, कोई गंदी चीज़ सामने आती थी तो उसको देखने और शौक में आगे से आगे तो नहीं चला जाता था। इसका रोज़ा रखना है। इस साल हमने आँख का रोज़ा रखना है। नीयत करते हैं पूरा महीना कोई ऐसी चीज़ देखूंगी भी नहीं, आँख भी नहीं उठाऊंगा ऐसी चीज़ की तरफ कि जिससे मेरा रोज़ा टूट जाए। फिर इसी तरह हराम गज़ा का रोज़ा, इससे परहेज़ करनी है। हलाल भी जहाँ तक हो कम खाए ताकि रोज़े के अनवार और बरकात हासिल हो, यानी टमी फिल नहीं करनी। गैर मसनून अमल है एक, क्या? पेट भर के खाना, पेट भर लो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमा के गए कि पेट के तीन हिस्से करो, जिसमें से एक हिस्सा खाली भी छोड़ दो हवा के लिए। तो हराम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। चेक कर लीजिए कोई चीज़ ऐसी तो नहीं गलती से घर में आई हुई, निकाल कर फेंकिए। फिर इसके बाद बदन का रोज़ा, जिस्म का। कैसे? हाथों से चोरी और जुल्म नहीं करना, और पैरों से चलकर किसी बुरी और गुनाह की जगह पर नहीं जाना। अल्लाह करे कि हमें ये रोज़े रखने की तौफीक दे। फिर अगली बात है ज़ुबान का भी रोज़ा है। झूठ, गीबत, गालियों, फजूल और बेहुदा बातों से बचना। मुश्किल तो है, मैं मानती हूँ ये मुश्किल है, आपकी साइड लेने को तैयार हूँ, लेकिन कोशिश तो कीजिए। टूटते टूटते बच गया रोज़ा, अल्लाह फिर भी बचा देगा, लेकिन आपने नीयत करनी है। और उसके बाद अगली चीज़ कानों का रोज़ा रखना है। कैसे? झूठ से, गीबत से, फुखश से, गाना बजाना, हर वो चीज़ जो नफ्स में इश्तिहार डाल दें, उससे खुद को बचाइए। ये सब कुछ करके भी डरता रहे कि अल्लाह जाने ये रोज़ा कबूल हुआ भी कि नहीं, कि शायद कोई गलती हो गई, मगर इस डर के बावजूद अल्लाह परवरदिगार के करम पर भरोसा रखे और उम्मीद भी रखे कि मेरे मालिक, मैंने वो किया जो तूने कहा और कुछ रह गया उस पे माफ़ कर दे। इस पे एक वाक्या है, तारीख का सुनाती हूँ चंद जुमलों में। एक बादशाह था तो उसको बहुत शौक था लोगों को आजमाने का। उसके इर्द गिर्द रहने वालों में एक मजनून टाइप कह लें या मजजूब कह लें, बहलूल नाम का शख्स था। बादशाह उसकी बड़ी तारीफ करता था, जिस पे दूसरे लोग चिढ़ते थे। एक दिन बादशाह ने सबको बुलाया तो कहने लगा कि मैं तुम्हें दो काम कह रहा हूँ, करके आओ। पहला पहली बात यह कि वो फलां जगह थोड़ी सी दूर फासले पे वहां एक छोटी सी नहर है, उसके तह में ये फलां चीज गिरा के उठा के लाओ, यानी उसकी तह में से कोई चीज निकाल के लाओ, एक काम ये है। और दूसरा ये है कि तुम्हारा जिस्म ना भीगे, गीले नहीं होना तुमने, जाइए। कुछ तो वहीं चिढ़ने लगे, बहस मुबहसा, ये कैसे होगा, मुमकिन ही नहीं, पानी में जाएं और भीगे ना। वो बाकी तो बहस करते रह गए, बहलोल अपनी जगह से उठा भाग गया। कुछ टाइम गुजरा, भीगा नुचड़ता वो चीज पकड़ के ले आया, लीजिए। कहने लगा कि ये जो आपने मुझे कहा था वो है। अब वो बादशाह ने पकड़ा, अच्छा ये काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन। कहने लगा, कपड़े क्यों गीले हुए हैं तुम्हारे? मैंने तो कहा था कपड़े भी ना गीले हों। अब वो जुमला सुन लीजिए, वो किसी का भी होगा, बस एक अच्छी बात समझ लें बस। कहने लगा कि बादशाह सलामत, आपने दो बातों का हुक्म दिया, एक ये था कि ये थैली लेके आऊं, ये मैं ले आया हूं, दूसरी चीज जो आपने कही कि भीगो नहीं, ये मेरे बस में नहीं था, मैं इस पर आपसे माफी मांग लेता हूं, मुझे माफ कर दे। ये है बंदा मोमिन की शान, बात समझ गए होंगे। फत्तकुल्लाह मस्तता, तुम अल्लाह से डर जाओ जितनी इस्तेआत में, जो कर लोगे अल्लाह कबूल कर लेगा, और जो नहीं कर सकोगे ना अल्लाह माफ कर देगा। तो आइए देखते हैं कि रमजान में करने के कुछ काम, चंद लफ्ज़ बोलूंगी, आप लिस्ट तैयार कर लीजिए। नंबर एक, ऑफ कोर्स रोजे रखने हैं, नवाफिल अदा करने हैं, तहज्जुद अदा करनी है, जमात से नमाज अदा करनी है, अभी से नियत कीजिए। इस साल तो अभी तक लॉकडाउन जो है बहुत ही खूबसूरत मौका है घरों में बच्चों बीवी के साथ जमात से नमाज अदा करने का। घर के मुलाजमों को भी साथ रखिए, वो भी इंसान है, ड्राइवर, माली बाबा, चौकीदार, इनको आगे खड़ा कीजिए अपने साथ, अपने बेटों को साथ कीजिए, और मासियाँ, लड़कियाँ और घर की खवातीन पीछे नमाज पढ़ें। बाय वन गेट 24 फ्री मिले तो कौन छोड़ेगा, तो जमात की नमाज का अजर ना छोड़िए। फिर इसके बाद अगला काम करना है कुरान पाक पर गौर करना है, तदब्बुर करना है, इंशाल्लाह सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, फिर तरावीह का अहतमाम करना है, फिर कुरान पाक का कुछ तर्जमा याद करना है। जो स्टूडेंट्स इस वक्त भी सुन रहे हैं और जो हमारे साथ हैं, उनको इस साल इंशाल्लाह ये भी एक एक्स्ट्रा चीज़ दी जाएगी, जो जिस क्लास के जिस सबक तक के आप में से ऑनलाइन ऑन साइट बाकी क्लासेस, तो आपने उन पारों तक तर्जमा लाजिम है कि याद भी करेंगे दोहराएंगे, तर्जमा पक्का कर लीजिए। देखिएगा आप रोएंगे तरावियां पढ़ते हुए जब आपको समझ आ रही होंगी। और जो हमारे लिसनर्स और नए मेहमान हैं और जो फ्यूचर में इंशाल्लाह तर्जमा याद करेंगे, वो क्या करें, वो ये दुआ मांगें कि अल्लाह इस साल तो ठीक है लेकिन अगले साल के रमज़ान से पहले पहले मुझे तौफीक देना कि मैं कुरान पाक को लफ्जी तर्जमे के साथ कुछ ना कुछ याद कर चुकी हूँ। फिर इसके बाद ये कि सूरतें याद करनी है, आपकी हैसियत है, पांच कर सकते हैं तो पांच, चार तो चार। इस पे भी इंशाल्लाह हम एक अलग प्लानर देंगे आप लोगों को कि जिसमें कुछ हर रोज़ पढ़ने की दुआएं और आयतें हैं। कुरान पाक खोलना हर वक्त मुमकिन नहीं होता, तो ज़ुबानी याद हो जाए तो बहुत है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोर्सेज़ में ऐसी दुआएं और आयतें याद करवाते हैं, तो इस रमज़ान में इंशाल्लाह सूरतें भी कुछ याद करेंगे हम लोग, और कुछ ख़ास आयतें भी, मसलन सूरत बकरा की आखिरी दो आयतें रात को पढ़नी होती हैं, अब कुरान पाक पास ना हो तो याद से पढ़ लेंगे, आले इमरान सूरत का आखिरी रुकू, और इसी तरह कुछ और। फिर इसी तरह नियत करते हैं कुछ वक्त सही तजवीद को बेहतर करना है, इसके कई तरीके होते हैं। ज़ाहिर है कि रमज़ान में तो माशाल्लाह बहुत ही लोग मसरूफ़ हो जाते हैं ना, तो आजकल ऑनलाइन पे बहुत ही खूबसूरत सॉफ्टवेयर्स और ऐसे सिलसिले मौजूद हैं, तो स्टूडेंट्स को ये भी थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ेगी। साथ ही दूसरे भी करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि जिनके ज़रिए हम अपनी तजवीद बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ जिससे दिल बदलते हैं, दिल धुलते हैं, और अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी कहा ये सब करना आसान हो जाता है, वो दौरे कुरान है। दौरे कुरान क्या है? सुन्नत है, अल्लाह के नबी सल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान पाक दोहरा लिया करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल कुरान के प्लेटफॉर्म से पिछले कई साल से दौरे कुरान ऑन एयर भी जाता है, और आप जैसे खूबसूरत साथी इससे फ़ायदा उठाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से कुरान पाक को पढ़ा जाता है, मैं एंड पे इसका तारुफ देती हूँ आपको, ताकि कल के सेशन में आने से पहले आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं, लेकिन बेहतर है कि इसको एंड पे ले जाएं, ताकि बिल्कुल आप लोग फिर उसको याद कर सकें। फिर इसके बाद हिफ्स यानी मेमोराइजेशन है। अगर आप पहले से हिफ्स कर चुके हैं, हाफिज़ हैं, हाफिज़ा हैं, तो रमज़ान हिफ्स को दोहराने का मौका है। उसके लिए आप अपने अपने घरों में तरावी का एहतमाम कर सकते हैं, डेली पारा सुनाइए, एक सामे बन जाए, एक मस्मू बन जाए, दिन में दोहरा लीजिए। घर का कोई दूसरा बच्चा, भाई बहन, उस वक्त उस बच्चे के याद करने में मदद कर दे, तो आप देखेंगे एंड ऑफ द डे वो पारा घर का हर फर्द किसी ना किसी तरह से कर चुका होगा। और इसी तरह तिलावत करना, रेसिटेशन। अगर आपकी अपनी तजवीद बहुत अच्छी, मुनासिब आपको लग रहा है, कोई गलती नहीं है हराम किस्म की, तो खुद कीजिएगा। और जिनको अभी लगता है कि हमारी कमी है, तो उसका एक बस तरीका बता के आगे निकलूंगे। और वो क्या है कि किसी भी अच्छे कारी की तिलावत को चूज़ करेंगे। आपको इसमें जिसको हेल्प चाहिए, हम आपको गाइड करने को तैयार हैं। ऐसे ऐसे खूबसूरत सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं कि आप आवाज़ को बीच में गैप्स लेकर उनके पीछे पीछे पढ़कर आ सकते हैं। और इसी तरह से कुरान पाक कारी साहब के साथ साथ पढ़िए, वो पढ़ेंगे तो आप साथ पढ़ें, पीछे पढ़ें, ये सब सेटिंग्स मौजूद हैं। इस पे बहुत अच्छे अच्छे ऐप्स मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इस्लाम 360 में भी कुरान पाक की काफ़ी तिलावत के ऐसे खूबसूरत नुस्खे भी मौजूद हैं। और भी चीज़ें होंगी, तो अपनी सहूलत के मुताबिक आप किसी से भी फ़ायदा उठा लीजिए। तो तिलावत करनी है इंशाल्लाह, और सारे मिलके ही कर लें एक ही जगह, तो माहौल भी अच्छा होगा और बरकतें भी उतरेंगी, ताकि अल्लाह की रहमत से हमारे घर इस वक्त मस्जिदें तो बने ही हुए हैं, मदरसे भी बन जाएं। चलिए एक चीज़ और, वो है रमज़ान में दुआएं। रोज़ेदार की दुआ भी कबूल होती है, और रमज़ान पूरे का पूरा ही दुआओं का महीना है। आप देखिए कि कोई ख़ास दुआ अलग से नहीं है, बात समझिएगा। मैं एक वाजे करता हूँ चीज़, क्योंकि दीन की बात है ना, तो कुरान सुन्नत तो सामने ही रखना है। हमारी शरीयत में रमज़ान के नाम पे यानी डे वन, डे टू, डे थ्री, ऐसी कोई दुआ नहीं है, बल्कि सहरी का वक्त जो है ही दुआओं का। व बिल असहारी हुम यस्तग़फिरून, अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे नज़ूल फरमाते हैं। आप आम दिनों में भी कोशिश तो करते हैं, लेकिन मुश्किल लगता है उठना, अब तो उठना ही है। ख़वातीन ने तो खाना बनाना ही था, 10 मिनट सिर्फ अल्लाह के आगे खड़े हो जाए, झोलियाँ फैला फैला कर मांगिए, वो देने वाला आसमाने दुनिया पे आके पूछता है कोई रिस्क मांगने वाला है, कोई सेहत मांगने वाला। हम उनको नहीं सुनाते और सारा दिन लोगों को सुनाते हैं, मुझे कोरोना हो गया, पॉजिटिव आ गया, ये आ गया, अब ये होगा। सहरी के वक्त में जो दुआ मांगे, और हज़रत याकूब की सुन्नत है सहरियों में अपने बच्चों के लिए इस्तग़फार मांगे, उनकी गलतियाँ, उनके गुनाह मांगे। और अगर आपकी माएँ जिंदा है ना, तो आज अपनी माँ को लाड में एक काम दे दें, अम्मी जी आपने सहरी के वक्त उठ के मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे। फिर इसी तरह इफ्तार और रोज़ा रखने के वक्त की दुआएं, और ये कौन सी दुआएं हैं अभी आपके साथ शेयर भी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह डेली ज़ादुल खैर में दुआओं के सेशन में आपने सीखा है, और आज भी सीखा है रमज़ान की दुआएं, ठीक है। फिर इसी तरह रहमत मांगिए, ज़ाहिर है कि जब शयातीन बंद हैं और अल्लाह की रहमत पलट रही है, तो आप भी मांगिए, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमती का इस्तगीस। कोई वक्त, अशरा, दिन, रात मखसूस करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी पे जब कोई मामला बहुत मुश्किल होता था, सख्त चीज़ आती थी, तब उस वक्त रहमत की दुआएं मांगते थे। फिर इसी तरह जहन्नम से निजात की दुआएं करें, क्योंकि जन्नत के दरवाजे खुल गए हैं, जहन्नम के बंद हैं, तो कहिए अल्लाह ताला इनको मेरे लिए हमेशा के लिए बंद कर दें। आफ़ियत की दुआएँ मांगिए, फितनों से निजात की दुआएँ मांगिए, क्योंकि ये तो हम हर दिन आपको एक दुआ भी दिलवाएंगे इंशाल्लाह। हर पारे के थीम के साथ दुआएं भी हैं और अहादीस भी हैं। फिर इसी तरह जो दुआएं आज के दौर में मांगने वाली हैं, उसमें एक बेहतरीन दुआ दीन के गलबे की दुआ कीजिए, क्योंकि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलव करिहल काफिरून वनसुरना अलल कौमिल काफिरीन। आज की इस नस्ल ने अगर दुआएं मांग ली, तो आने वाली कई नस्लें बड़े बड़े फितनों के मुकाबले में इंशाल्लाह एक मजबूत ढाल बनेंगी ये दुआएं। फिर इसी तरह कुछ अस्कार भी करने हैं रमज़ान में, जिस तरह दुआएं कसरत से मांगनी है, इसी तरह अस्कार भी हैं। मसलन ये वो हैं जो मोमिन हमेशा ही करता है, लेकिन ख़ास तौर पर रमज़ान में तो बहुत ही वक्त होगा। मसलन सुबह शाम के अस्कार नहीं छोड़ने, तकरीबन 30 के करीब अस्कार हैं जो अल्लाह के नबी से मसनून है, और दुआओं के सेशन में ऐसी चीज़ें हम सीखते ही रहते हैं। बुक्स में मिल जाती हैं। जिन साथियों को ज़बानी नहीं आते तो वो हिस्नुल मुस्लिम नाम की एक बुक ले लें, जहाँ से भी आपको मिले। मेरा गुमान है बहुत सी ज़ुबानों में मौजूद है, उर्दू इंग्लिश में तो मौजूद ही है। फिर इसी तरह से ऐप भी मिलते हैं, उन्हीं के ऐप डाउनलोड कीजिए। फिर इस तरह सोते वक्त के अज़कार, कम अज़ कम 32 के करीब अज़कार हैं अल्लाह के नबी के, जिसमें एक सूरत अल मुल्क भी है और सूरत सजदा पढ़ना भी है। फिर इस तरह से इस्तिग़फ़ार और ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला कसरत से पढ़िए। हमने अपने सेशन पिछले दिनों में जो ज़ातुल ख़ैर में किए, रिज़्क़ की कुंजियाँ, उसमें इस्तिग़फ़ार एक चाबी है जो दरवाजे खुलवाती है जिससे रिज़्क़ आता है, और ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला गम को दूर करने की दुआ है, दिलों से गम निकल जाते हैं। और इसी तरह से तस्बीहात कीजिए, सुबहान अल्लाह कहना, तहलील कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना और तहमीद कीजिए, अल्लाह ताला को बड़ा करिए, ला इलाहा इल्लल्लाह करें। और सबसे अफसल जिक्र क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये क्यों अफसल जिक्र है, ये अब कुरान के दौरान हम जानेंगे और हम सबको पता भी है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अल्लाह का नाम बुलंद कीजिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मनवाइए। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि रमज़ान में करने के काम, जो पीछे हमने एक मुख्तलिफ तरह से देखे थे, यहाँ उसको ज़रा एक और एंगल से देख लीजिएगा। गोल सेटिंग है, ताल्लुकात, मामलात और आदात। वहाँ क्या था, मामलात और इबादात, यहाँ आदात है, यानी हैबिट्स डिवेलप करने। आप ये लिख लीजिए कि मैंने रमज़ान में कुछ हैबिट्स डिवेलप करनी है। मसलन सबसे पहली बात है कि अच्छी किताबों का मुताला करना है, रीडिंग स्किल्स बढ़ाइए। कोई एक बुक, सीरत की बुक रख लीजिए, सहाबियात पे कोई बुक रख लीजिए, या आपने लाजिम करना है अपने ऊपर, और बाद में ग्रुप्स में भी शेयर भी करना है कि क्या करें। फिर इसी तरह बेजा दावतों से परहेज़ करना है, मेरा अल्लाह ये तो अभी तक मुमकिन नहीं है, इल्ला ये कि अल्लाह ताला इस लॉकडाउन को खोल दे। फिर नेकियों में भागना है, नेकियों से नहीं, नेकियों में भागना है, नेकियों की तरफ भागना है, टूवर्ड्स गुड डीड्स, ठीक है। और इसके बहुत से तरीके हैं, हर नेकी के मौके को जो आपके हाथ में, और चेक कीजिए मौजूदा नेकी से ये मैच करता है मौका, ये कहीं मुझे दूसरी तरफ ना डाइवर्ट करे। यहाँ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, लुक बिजी डू नथिंग ये ना कीजिए। हम में से कुछ लोग हर चीज़ को ओके करते हैं, ये भी ये भी ये भी, एंड ऑफ द डे सिर्फ आपके पास रिग्रेट रह जाता है, क्योस है, परेशान है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, कुछ नहीं। गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर सीधा जाता है तो मंजिल पे पहुंचता है, थोड़ा दाएं भी देख लूँ, थोड़ा बाएं, कोई बात नहीं, माइलेज ही तो ले रहा हूँ। तो नेकियों का सफ़र एक रुख पे कीजिए, और कनेक्शन के साथ, कनेक्शन मिलते हैं तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं, ये बहुत अहम है। जब हम खास अरसे तक एक नेकी एक मामले में कर रहते हैं, अब कहते हैं ज़रा कोई और नेकी देखें, कीजिए लेकिन अपनी शाख से ना टूटिए, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। फिर इसी तरह सदका खैरात करने की आदत डालिए, 1 रुपया। आप पाकिस्तान से सुन रहे हैं, अगर इंडिया में है तो वहाँ भी रुपीज़ ही हैं, आप अमेरिका में ना 10 सेंट्स, यूके में 10p, नॉर्वे में 2 करोन, पेरिस में 1 यूरो, उसका कोई 10वां हिस्सा रोज़ करूँगी। और अपने बच्चों से भी सदका करवाइए, देखिएगा इंशाल्लाह बच्चों में बहुत खूब पैदा होगी। फिर अगली बात जो आदत बनानी है, वक्त ज़ाया नहीं करना। एक दूसरे को तोहफे तहाइफ दे सकते हैं ईद के मौके पे, उससे पहले भी दे सकते हैं, तहादू तहाबू, हदिया दीजिए तो मोहब्बत पैदा होगी। फिर इसी तरह अल्लाह रसूल और कुरान से ताल्लुक़ मजबूत करना है, इसके बहुत सारे रास्ते हमने देखे, और सब रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात। और आखिरी चीज़ जो बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल लगती है कभी लोगों को, बल्कि जुमला बोलने दीजिए कि 10 अच्छी आदत डालना आसान है, 1 बुरी आदत को छोड़ने के मुकाबले में, बुरी आदत छोड़नी है। हम खुद भी थके होते हैं, यकीन करें, हमारी बाज़ आते हैं हमें इतना रुसवा कराती हैं, हर जगह शर्मिंदगी का एहसास होता है पर छुटती नहीं है। इंशाल्लाह नियत कीजिए, अपनी बुरी आदत लिख कर उसको कोशिश करेंगे, और ख़ास तौर पे जो ताल्लुकात मामलात से मुतल्लिक हों उसको तो देखिए, तो देखिएगा अब रमज़ान जब इतनी तैयारी के साथ करेंगे तो अल्लाह की रहमत तो आएगी ना। और क्या करना है, अब चंद जुमले, कब से लेकर रमज़ान में दाखिल होने के दरमियान क्या क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़, रमज़ान के चांद को देखने का एहतमाम करना। आज ये चीज़ कम होती जा रही है, बचपन आपको भी अपना याद होगा, छतों पे खड़े हो जाते थे लोग, वो देखो वो है ये है, और चांद देखना मुसलमान की सिर्फ रिवायत नहीं है, ये सुन्नत है, ये फ़र्ज़ है। कुरान में फमन शहीद मिनकुम शखरा फल यसुम हो, तो चांद देखने का इहतमाम कीजिए। इस पे चंद जुमले मुझे बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब सुन्नतें मुर्दा होने लगती हैं ना, तो दीन की असल की जगह बिदात आने लगती हैं, मनमानी आती हैं। कई लोग कह रहे हैं, लोगों ने अनाउंस कर दिया नेक्स्ट फ्राइडे को रोज़ा है, फ़लाँ ने तो कैलेंडर भी दिया। देखिए, मैं कुछ नहीं कहूँगी इस पे, लेकिन आपको ये कहूँगी कि चांद के देखने से पहले आप अनाउंस नहीं कर सकते। वजह, आप देखिए कितना मज़ा आता है, पता नहीं कल होगा कि नहीं रोज़ा। वो कहते हैं ना, ईद 29 की ही होती है, 30 के बाद तो पता ही है ईद आनी है। तो सवाल लिखिए खुद से, हम चांद क्यों देखें? और चांद देखते वक्त फिर एक जो दुआ है वो क्या है? चांद को इसलिए देखना है कि कल हम अपने रब को देखना चाहते हैं। और जब दुआ मांगता है ना इंसान, कि अल्लाहुम्मा अहलिल हु अलैना बिल युमनी वल ईमान व सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुक अल्लाह, अल्लाह बहुत बड़ा है, या अल्लाह इस चांद को हम पर बरकत, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ निकालना। यहाँ तक को अल्लाह को पुकारा, और फिर चांद को मुखातिब किए बगैर इंसान कहता है, ऐ चांद, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। सुभान अल्लाह, शिर्क की जड़ कट गई। पिछली कौमें चांद को खुदा कहती थी, चांद देवता। सन डे तो है सन का डे, तो मन डे मून डे है। अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं, चांद की पूजा करते थे लोग। बंदा चांद देखते ही कहता है कि अल्लाह, चांद तेरी मखलूक है, तेरे कब्जे में है, तो इसको बड़े बरकत, ईमान और सलामती और इस्लाम के साथ निकालना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, और बहुत सारे हवाले हैं इस एक हदीस की दुआ के, कि पूरा महीना इंसान फिर अमन, अमान और सलामती में रहता है। और फिर चांद को पीछे करके रब्बे चांद की इबादत करनी है। तो क्या पता चला कि चांद देखने का एहतमाम करना चाहिए। अब ये कि देखने के बाद अनाउंस कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। मुस्लिम मुल्क में रहने के ये फ़ायदे हैं कि आपके मामले आपके हुक्मरानों के हाथ में है, और अल्लाह उनको सही फैसले करने वाला बनाए, आप और मैं मुकल्लफ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने आपको मुझे आज़ाद कर दिया, कम्युनिटी के साथ रहिए, गवर्नमेंट जो कहती है उसको मान लीजिए, और गवर्नमेंट वो चूज़ कीजिए कि जो कुरान सुन्नत पे हो। आप कहते हैं गैर मुल्कों में रहते हैं, अब क्या करें? जो वहाँ मुसलमानों को प्रेजेंट करने वाला बड़ा ग्रुप है, कुरान सुन्नत के भी करीब है, और मसाइल कुरान सुन्नत के मुताबिक है, बस उसको फॉलो कीजिए। ये इंडिविजुअल लेवल की बात नहीं है कि घर में एक शख्स रोज़े से हो और दूसरा ईद की नमाज़ पढ़े। इस वक्त ये भी सबक पढ़ाने की ज़रूरत है कि नफली बात है, इसको छोड़ो। ईद के नमाज पे क्या झगड़ना, फजर की नमाज पे देखो कि अल्लाह ताला ने उसमें तुम्हारे लिए क्या खैर रखी है। और फिर उसके बाद आप देखिए कि जब ये दुआ मांगेंगे, घर के झगड़े ख़त्म, फितने ख़त्म, बीमारियां ख़त्म, क्या पता हमारा इस दुआ का पढ़ना, और वो भी चांद देखते हुए, हमें कोरोना के वायरस से निजात दे दे। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस बीमारी से और इस वबा से सारी इंसानियत को महफूज रख दे। और हमने काफ़ी सबक सीख लिए कि तूने दुनिया में ही क़यामत के दिन को पेश कर दिया, कि उधर तो अब भाई भाई से भाग रहा होगा, यहाँ भी लोग इंसान इंसानों से भाग रहे हैं, लोगों की मोहब्बतों के पोल खुल गए। तो फिर क्या किया आपने? चांद देखा, दुआ की, और चांद से सीखे कि एक रब के हुक्म पे गर्दिश में है, हमने भी इसी रब के तरफ जाना है। कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो चांद देखो और दुआ करो कि अल्लाह, आज जैसे चांद देख रही हूँ ना, इस तरह कल तू भी मुझे दिखना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, चांद देख कर रोज़ा रखो और चांद देख कर इफ्तार करो, सूमो रुआती व अफ्तरो रुआती। तो इस सुन्नत को भी आपने ज़रूर अल्लाह के हुक्म से पूरा करना है। और सही मुस्लिम में भी ये रिवायत हमारे पास मौजूद है हज़रत इब्ने उमर से, कि अल्लाह के नबी ने रमज़ान का जिक्र किया, फिर फरमाया, तुम रोज़ा ना रखो जब तक चांद ना देख लो, और इफ्तार ना करो जब तक चांद ना देख लो। हाँ, अगर बादल आ जाए तो 30 दिन पूरे करो, यानी अगर निकलता नहीं या चांद बादलों में छुप गए तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। और इसकी असल हकीकत यही है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन तुम अपने रब को देखोगे, और ऐसे देखोगे कि बीच में कोई बादल ना हो और चांद नज़र आए, तो कैसा आता है? साहबा ने कहा, बहुत खूबसूरत, क्लियर, कब इसी तरह तुम रब को देखोगे। तो जैसे हज़रत मूसा ने दुनिया में मुतालबा किया था ना, आरिनी, मुझे दिखा अपना फंजुर, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला से बंदा ये दुआ करके अपने दिल की तड़प रखता है कि अल्लाह, तुझे देखना चाहती हूँ। आज ये खुशी चांद को देख के होगी, तो कल खुशी रब्बे चांद को देख के होगी। और एतराफ़ है, ज़ुबान से जब निकलते हैं, और अल्लाह की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है, इसी से तो अल्लाह की बड़ाई दिखती है और आपको अपनी अबदियत दिखेगी। तो जितना ज़्यादा इस तजुर्बे को अपने बच्चों के और घर वालों के साथ करेंगे, आप अल्लाह के करीब होंगे। फिर दुआ में रमज़ान में मांगी अली दुआएँ जो ख़ास हैं, उसमें रोज़ा इफ्तार करने के बाद की दुआ है। खजूर खा लीजिए, पानी पी लीजिए, कुछ खाइए, फिर कहिए ज़हब ज़माओ वब्तलतिल उरूक वसबत अलअज्रु इंशा अल्लाह। प्यास चली गई और अगें तर हो गई, और अगर अल्लाह ने चाहा तो अजर साबित हो गया। यह अबू दाऊद की रिवायत है 2357। ये दुआ मांगिए। ये थोड़ी सी कुछ लोगों को नई लगेगी, क्योंकि हमारे कल्चर में अमूमन अल्लाहुम्मा लका सुमतु वली मांगी जाती है। हालांकि आप देखिए रेफरेंस मौजूद है, आप ख़ुद हदीस की किताबों में सर्च कीजिए, और आज के दौर में हदीस को सर्च करना भी अल्हम्दुलिल्लाह मुमकिन हुआ। इस्लाम 360 पे पूरी हदीस की सर्च है। अगर आपको इस ऐप को देखने का मौका मिला हो तो आप टॉपिक लिखिए, चांद लिखिए, कुछ भी लिखिए, तो आपको ये चीज़ें खुद भी मिलेंगी। और ये काम उलमा कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान सुन्नत को जानने वालों की रिसर्च पे एतबार करते हुए आप ये दुआएं भी मांग सकते हैं। और अगर आती नहीं है तो ज़ुबानी पढ़ने की बजाय देख भी सकते हैं। तो ये चंद बातें थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज चूँकि वेलकम रमज़ान था, हमने रमज़ान का इस्तकबाल करना है, और एक मेहमान घर आने वाला हो और उसका इस्तकबाल अच्छी तरह ना किया जाए तो ये बात भी इंसान को मायूब लगती है। हमारे कल्चर में मेहमान नवाजी भी है, और कुशादा पेशानी के साथ खुशी से मेहमान को वेलकम करना है। तो ज़रा दिल से पूछिए, क्या रमज़ान जैसे खूबसूरत मेहमान को वेलकम करने के लिए अब आप तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम चलते हैं अपने इस साल के दौरे कुरान के थीम की तरफ। थोड़ा सा आपको बस ज़हनी तौर पे तैयार करना है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम कितनी बड़ी चीज़ सुनने वाले हैं। और ये बात जिसको इस वक्त अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसान किया है, इस दौर की ज़रूरत थी। असल चीज़ काबिलियत नहीं, कबूलियत है। और कबूलियत का मेयार क्या है कि बात जो कही सुनी जाए वो कुरान और सुन्नत से हो। तो ग्रीन लेन मस्जिद, जिसको इन शॉर्ट GLM कहा जाता है, ये हमारे साल के होस्ट हैं अल्लाह की रहमत से। हमने कुछ और सोचा, अल्लाह का प्लान कुछ और था। वमा तशाउन इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन। तो इस मस्जिद ने हमें ऑन साइट दौरे कुरान के लिए इनविटेशन दिया अल्लाह की रहमत से। जो साथी इसमें मददगार थे उनका अजर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से महफूज होगा और अल्लाह अता करे। लेकिन चूंकि इस वक्त लॉकडाउन है और आप सब जानते हैं कि हुकूमत का ये फैसला, तो हमारा दीन हमें ये भी सिखाता है कि जिस जगह रहिए उसके कवानीन को फॉलो कीजिए। तो हमने बड़ी खुशी से इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तब उसका तरीका क्या है, जो लोग बर्मिंगम से सुन रहे हैं हमें, उन सब के लिए ख़ास तौर पे ये बात है कि आप ग्रीन लेन मस्जिद में ऑफ कोर्स नहीं जाएंगे क्योंकि आपको शहर में कहीं भी इधर उधर एक्स्ट्रा जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन इस वक्त भी हमारा ये प्रोग्राम GLM TV और उनकी फेसबुक और यूट्यूब के चैनल ऑन एयर आ रहा है, और इंशाल्लाह ताला ये रोज़ इसी वक्त पे आता रहेगा। आप लोग उससे फ़ायदा उठाइए, और प्लस इस तरह नूरुल कुरान के चैनल पे भी ये अल्लाह की रहमत से सभी चैनल्स पे आ रहा है, और भी बाहर के कुछ जगहों पे अल्लाह की रहमत से है। आप अगर इन दो के ऊपर भी अपने आप को फोकस करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो इस साल का दौरे कुरान और उसको आपने मैंने जिस थीम के अंदर लेना है वो क्या है, दौरे हाजिर के फितने और उनके मसाइल। आप देखिए कि इस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत है कि हम लफ्ज़ फितना को समझें। फितना क्या है और फितने में पड़ने के बाद क्या होता है? तो बेसिकली फितना अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लेकिन उर्दू में भी बोला जाता है, आप सभी जानते होंगे। आम तौर पर इसके मानी इम्तिहान, आजमाइश, जांचने और परखने के होते हैं। फितना होता तो असल में नेमत है, मगर इसका गलत इस्तेमाल इसको इम्तिहान और आजमाइश बना देता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे देती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह साथी कहते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गई। क्योंकि देखिए ना, कुरान में औलाद को भी फितना कहा गया, हाँ माल को भी फितना कहा गया, इवन बीवियों को भी फितना कहा गया, मिसाल दे रही हूँ। तो अब समझ नहीं आता कि बच्चे फिर आजमाइश है, फितना है या नेमत है। अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया भी कहा गया। तो सवाल का जवाब लिख लीजिए, आपको बोल तो दिया है कि चीज़ नेमत थी लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से आजमाइश बन गई। मसलन छुरी, छुरी नेमत है कि नहीं? ऑफ कोर्स नेमत है। आप कैसे लहसुन प्याज काटते, छीलते, आलू प्याज सब्जी काटें या गोश्त काटें, छुरी चाहिए ना। बस करने वाला अनाड़ी हो और करे क्या कि उसके हैंडल से पकड़ने की बजाय जो काटने वाला हिस्सा है उसको अपने हाथ में रखे और जो हैंडल है वो गोश्त पे रख दे। तो फिर किसका गोश्त कटेगा? बकरे का नहीं कटेगा, आपका कटेगा। ये है फितना। छुरी नेमत थी, आपने उसको मिसयूज़ किया तो वो आजमाइश बन गई। बिजली नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मैं इस वक्त भी किसी न किसी जगह से बिजली के नाते से ही जुड़े हुए हैं ना, लेकिन बिजली के खुले तार को हाथ लगा दीजिए तो मौत का पैगाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ गए, औलाद नेमत है, लेकिन अगर गलत तरबियत करेंगे तो आजमाइश बन जाएगी। माल बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन गलत इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही नुकसान होगा। चलिए नेक्स्ट थिंग, क्या कुरान पाक में फितने की बात हुई है? बहुत हुई है। कुरान पाक में फितने का मफहूम क्या है? तो फितना बमानी शिर्क के भी आया है, फितना बमानी कुफर के भी आया है, फितना बमानी अजाब, फितना गुनाह के मानी में भी आया, फितना आजमाइश के मानी में भी आया, फितना आग में जलाने के मानी में भी आया, और फितना कत्लो हलाकत के मानों में भी आया, और फितना जालिमों के तसल्लुत के मानी में भी आया। हम इन सारों को कैसे देखेंगे कि असल में इनकी हकीकत क्या है? क्योंकि देखिए, हमने आधा इल्म लिया होता है और उसी के ऊपर परेशान है, छोटी छोटी बातों पे फतवे देने लग जाते हैं, ये भी फितना वो भी फितना। ऐसा नहीं है। आप महसूस करेंगे कि फितने की ये मुख्तलिफ सूरतें जो आपके सामने मैंने रख दी, इन सबको सुनने और पढ़ने के बाद तो खौफ आने लग जाता है कि अल्लाह कहीं हम शिर्क में, कुफर में, आजमाइश में, अजाब में, गुनाह में, आग में जलाए जाने के, कत्लो हलाकत के, जालिमों के तसल्लुत के किसी फितने का शिकार तो नहीं है। और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नौजवान नस्ल की सोच किधर जा रही है, मुआशरे का रुख क्या हो रहा है, तरबियत के अंदाज़ क्या हैं, कहीं हुब्बे माल तो नहीं, कहीं हम माल कमाने में अल्लाह की हदों को तो नहीं पामाल करें, कुरान सुन्नत की बजाय बिदात का शिकार तो नहीं हो गए, हमारी खुशी अल्लाह को राज़ी करने की जगह नाराज़गी का ज़रिया तो नहीं बन गए, हम कहीं शख्सियत परस्ती का शिकार तो नहीं हो गए। एक से एक बड़ा फितना है जो आज हमारे सरों पे बोल रहा है। कहीं हम अहले कुफर को तरक्की करता हुआ देखते हैं तो कहीं उनके गलबे को देखते हैं, और कहीं अपनी औलादों को गैर मुस्लिमों के ताल्लुक के और उनके साथ इख्तलात की वजह से बिगड़ता देखते हैं। कभी मुसीबतें, कभी बीमारियां, और आज इस वक्त सबसे बड़ी आजमाइश जिसको लोग आजमाइश कह रहे हैं वो कोरोना की आई हुई है। हालांकि उसमें क्या रहमतें हैं ये भी हम देखेंगे, लेकिन हम में से बहुत कम को खुशहाली भी फितना नहीं दिखती, दौलत भी फितना नहीं दिखती, माल की कसरत भी फितना नहीं दिखती। तो अल्लाह ने चाहा, आपके नसीब में हुआ। दुआ करूंगी कि अल्लाह मुझसे ये काम ले और आपको मैं दूं। अगला सवाल लिखिए कि फितने आते क्यों हैं? बस आज के दौर में कोरोना का मर्ज आया, वजह बनी और लॉकडाउन में चले गए, मकसद क्या है? तो नंबर एक, फितने का मकसद पहचान होती है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन पे भी फितने आते हैं, इदारों पे भी फितने आते हैं, मुल्कों में हुक्मरानों पे भी आते हैं। फितनों में खरे और खोटे अलग हो जाते हैं। जो सच्चे दिल से जुड़े हुए आपके साथी होते हैं ना, वो आपसे और जुड़ जाते हैं। ये ऐसे है कि जैसे जहाज हिलता है या झटके खाता है तो बच्चा माँ से चिपक जाता है, और फितनों और आजमाइशों में कच्चे लोग झड़ जाते हैं। इस्लाम पे जब भी फितने आए तो दो नतायज उसके ज़रूर निकले। या तो इस्लाम ऐसे खोटे लोगों से पाक हो गया कि जिनके दिल सीने कुछ और थे, जो अब्दुल्ला बिन उबई के साथी थे लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में दाखिल हो चुके थे और शौत के मुकाम पे फैसले हो गए। लेकिन एक और फ़ायदा भी होता है कि जिस तरह ये खोटे लोग इस्लाम से दूर हो जाते हैं ना, तो इस्लाम भी फिर इनकी ज़िंदगियों से निकल जाता है। तो मोमिन और मुनाफिक का फ़र्क फितनों के बाद ही पता चलता है। मसलन मोमिन फितनों के दौर में भी साबिर रहता है और दूसरी तरफ बेसब्रापन है। मोमिन शाकिर रहता है, दूसरे लोग नाशुक्रे हो जाते हैं। मोमिन अल्लाह की रजा में राजी रहने वाला होता है और दूसरी तरफ शिकवे शिकायतों के लंबे अंबार, लंबी लिस्ट है। ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं, कुछ भी नहीं ठीक। भाई आप ठीक है ना तो शुक्र कीजिए। इसी तरह फितनों में मोमिन सिर्फ अल्लाह का दामन पकड़ते हैं। वा तसीमु बिल्ला वा तसीमु बिहब्लिल्ला, दोनों चीज़ें एक सूरह हज में और एक सूरह बकरा में। जबकि मुनाफिक फितने के वक्त पे दर दर का भिखारी हो जाता है, कभी उस दर पे जाता है कभी उस पे जाता है। उसको ये बात ही नहीं समझ आती कि वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है दिलाता है हजार सजदों से आदमी को निजात। इसी तरह मोमिन फितनों में और नेक बन जाता है, उसके अंदर की वो सच्चाई बाहर आ जाती है, जैसे कभी जलजलों के बाद ज़मीन अपने हीरे मोती बाहर निकाल देती है। इसके बरक्स गुनाहगार इंसान और गुनाहों में पड़ जाता है। वो कहता है अब छोड़ो, अल्लाह तो मानता ही नहीं, तो अब हम क्या करें, अब घर बैठे हैं तो हम क्या देखें, फिर हम वक्त कैसे गुजारें। फिर इस तरह मोमिन अहकाम शरीयत की पाबंदी करने वाला होता है और दूसरी तरफ गुनाहों पर डटने वाले होते हैं। मोमिन फितनों के बाद कामयाब होता है, उसका रिजल्ट अच्छा निकलता है, वो विनर और टॉपर में चला जाता है। और मुनाफिक और उसके बाद की सारी ही नस्लें या जो इससे भी बुरे लोग हैं वो क्या होते हैं कि वो नाकाम होते हैं। सवाल पैदा होता है कि फितनों में कामयाब होने से मिलता क्या है, तो चंद चीज़ें नोट कीजिएगा। फितनों में कामयाब होने के समरात, नंबर एक, आजमाइश हल्की हो जाती है। दूसरे हौल रहे हैं हौल रहे हैं, मोमिन कहते हैं एवरी थिंग इज़ ओके नाउ। फिर फितनों में कामयाब होने वाले को अल्लाह ताला अजर और सवाब देते हैं। और अगली बात कि इन फितनों में इंसान की छुपी हुई सलाहियतें बाहर होती आती हैं। आप देखिए कि एक बच्ची हालात के थपेड़े खाती है, नमाज से अच्छी हो जाती है, बहुत प्रोडक्टिव हो जाती है, अल्लाह की किताब हाथ में लग जाए तो वो दूसरों को सर्व करने लग जाती है। एक बच्चा है उसको जॉब नहीं मिली या मिल के छिन गई, फारिग है, आप कहते बेटे के पास जॉब ही नहीं, उसको को समझो, चलो अपनी स्किल्स लगाओ, जो जॉब पैसे कमाने के लिए करनी थी उस काम को नेकियां कमाने में लगाओ, देखो तुम्हें जॉब एक नहीं 10 मिलेंगी। शैतान तो चाहता ही नहीं है कि कोई नेकियों में अपनी स्किल्स लगा दे। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि फितनों का एक समरा इस्तकामत फिद्दीन मिलती है। आपने कभी किसी बढ़ई यानी कारपेंटर को देखा होगा कि मसलन टेबल बनाता है फिर उसको चारों तरफ से हिलाता है। आप खुद अगर कोई चीज़ लेके आते हैं कोई फर्नीचर इकिया से, तो जब आप असेंबल करते हैं ना तो कच्चे कच्चे कील लगा के छोड़ते हैं, फिर उसको हिलाते हैं जुलाते हैं ताकि हर चीज़ अपनी जगह पे आ जाए। बिल्डिंग्स भी इसी तरह बनती हैं, फिर उसके बाद आप ठोक देते हैं ऊपर हथौड़े बरसाते हैं। अल्लाह भी फितनों में जमने वालों को बाद में दीन में जमा देता है और सबसे बढ़कर ईमान बढ़ता है और अल्लाह का कुर्ब मिलता है। अब जितने भी फितने हम 30 पारों में करेंगे उसके कुछ डिफरेंट डिविजन्स हैं। मसलन मुख्तलिफ किस्म के फितनों में से एक तो माल और औलाद है, इस पे बहुत बात होगी इस साल। फिर औरत और नफसानी ख्वाहिशात हैं, यानी औरत से मुतल्लिकात जिसमें मर्द को कशिश महसूस होती है, हमारे जवान होते हुए बच्चों के लिए आज के फितने, गली गली यूसुफ की तरह दिल फेंक औरतें मिलेंगी, यानी जैसे औरतें यूसुफ पे दिल फेंक रही थी हमारे बच्चों के लिए भी दिल फेंकने वाली क्लास फेलोस मौजूद हैं, तो कैसे अपने बच्चों को और जवान होते हुए बच्चों को ख़ास तौर पे और इसी तरह दूसरों को बेटे बेटियों बीवियों शोहरों को बाहर के माहौल के सहर से निकाला जाए। इसके अंदर फिर और बहुत कुछ आएगा जो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस ताल्लुक़ में जिना भी और फहाशी भी और हम जिनसियत परस्ती भी है। फिर इसके बाद गुमराह कुन नज़रियात, अमली और इल्मी और तमद्दुनी फितने, इसमें दीन से मुतल्लिक जो शख्सियत परस्ती और हक को छोड़ के बातिल और सिर्फ क्लिक्स के ऊपर ही किसी पे कुर्बान हो जाने वाले फितने आएंगे। और इसी तरह से फिर दीनी और दुनियावी हालात में अखलाकी और मुआशरती फितने। अब अभी आपको ये नहीं समझा सकती, वक्त चूँकि आलमोस्ट पूरा होने वाला है आज के सेशन का, लेकिन बस इंतज़ार कीजिए, थोड़ा थोड़ा मिलेगा तो ज़्यादा मिलेगा। सिलसिला तो सहीहा की हदीस जाने से पहले आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी, 2553 है, काब बिन अय्यास से कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, अब ये अल्फाज हैं आपकी ज़बान मुबारक के जिसका उर्दू में तर्जमा किया गया, यकीनन हर उम्मत का एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। जी माल बहुत बड़ा फितना है, इसलिए इस दफ़ा इस पर बहुत बात होगी। फिर इसी तरह से सहीह बुखारी 5096, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कि मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरतों के फितने से बढ़कर नुकसान देने वाला कोई और फितना नहीं छोड़ा। क्या जुम्मते मुस्लिमा भी इसकी मुंह बोलती तस्वीर नहीं बन गई? कैसे इस रिश्ते में और इस औरत मर्द की बहस में पड़कर आज घर घर में बिगाड़ है। अल्लाह ताला बचा के रखे। सही बुखारी की एक और रिवायत लीजिए, 7090। अनस रजी अल्लाह अनहु ने कहा, हर शख्स कपड़े में अपना सर लपेटे हुए रो रहा था और फितने से अल्लाह की पनाह मांग रहा था, या यूं कह रहा था कि मैं अल्लाह से फितने की बुराई से पनाह मांगता हूँ। दुआएं मांगनी है, आप फितनों से बचने की बहुत सी दुआएं सीखेंगे इस साल, क्योंकि कुछ काम तुम्हारी कोशिशों से हो जाएंगे, कुछ दुआओं से करवाने पड़ेंगे। और सही बुखारी की एक और रिवायत लिखिए, 3601। ये रेफरेंस याद करना आपको लाजमी है, याद से मुराद है कि नोट करना, क्योंकि वरना तो सिर्फ आपकी बात और मेरी बात, इसकी तो कोई औकात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितनों का दौर जब आएगा तो इसमें बैठने वाला खड़ा रहने वाले से बेहतर होगा, खड़ा रहने वाला चलने वाले से बेहतर होगा, और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। जो इसमें झांकेगा फितना भी इसे उचक लेगा। अल्लाह अकबर। और इस वक्त जिसे जहां भी पनाह मिल जाए बस वहीं पनाह पकड़ ले, ताकि अपने दीन को फितनों से बचा सके। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह हमें इस फितने से भी बाइज्जत तरीके से निकाल ले, जो आज के दौर में उम्मते मुस्लिमा नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पे लागू है। हल क्या है? सोल्यूशन के बगैर बात नहीं बनती। तो फितनों से बचने का या फितनों में से निकलने का हल क्या है? नंबर एक, फितने के मफहूम को समझें, और हमारे लिए क्या चीज़ फितना है इसको पहचानें। अल्लाह ताला कुरान पाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरा ताल्लुक़ रखिए, इखलास पैदा कीजिए, इस्लामी शरीयत के अवामिर और नवाही की पाबंदी कीजिए, यानी डूज़ एंड डोंट्स पे अमल कीजिए, मोहब्बत सालिहीन पैदा करें, नेक लोगों से मोहब्बत करके क्या कहें, सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, उस रास्ते पे हमें भी चला जिस पे तेरे ही नाम वाले चले। ये नहीं कि उनके पल्लू थाम कर हम बच जाएंगे, खुद भी नेकियां करें और गुनाहों के सारे काम छोड़ दें और फिर तौबा इस्तिग़फ़ार करें, नेकियों में भागें, जिक्र अज़कार को लाजिम कर लें, मकसद हयात को पहचानें, फितनों से बचने की दुआएं करें, और सबसे बढ़कर अपने ईमान की हिफाजत करें। अल्लाह ताला आपके मेरे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें ज़िंदगी और मौत के सारे फितनों से बचा के रखे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।